धन्यवाद भाई। जबकि हम खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन के रचने वाले और सारी अच्छी चीजों को देने वाले आत्मिक वरदानों के, अब हम वास्तव में आभारी हैं इस बहुत शानदार श्रेष्ठ आपकी उपस्थिति में एक संगति के समय के लिए। एक विशिष्ट महान चिन्ह हमारे जीवनों में प्रभु, एक समय जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे, कोई मतलब नहीं हमें कितनी देर रुकना चाहिए। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस समाप्ति की रात्रि हम वचन पर ध्यान दे रहे हैं। पर्व की समाप्ति के दिनों में यीशु उनके बीच खड़ा हुआ और पुकारा, यदि कोई मनुष्य प्यासा हो वो मेरे पास आए। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि ये फिर से दोहराया जाएगा कि हम अपने प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हैं कि हमें बुला रहा है और हमें अपनी सेवा के लिए बुला रहा है। साथ साथ चलें। हम अनुभव करते हैं कि हमने उसकी आवाज़ पहले ही सुन ली है इन मोहरों के खुलने में, बोलते हुए कि ये अंतिम दिन है और समय निकट है। इन आशीषों को प्रदान करें जो हमने मांगी हैं, पिता यीशु मसीह के नाम में और उसकी महिमा के लिए, आमीन। बैठ जाएं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सारी सभाएं जो कभी मैंने अपने जीवन में की, मैं विश्वास करता हूं कि ये सप्ताह मेरे जीवन की सेवाओं का सबसे शानदार समय रहा। कोई मतलब नहीं मेरे पास क्या, निसंदेह मैंने इसके पहले बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हुए देखे और चंगाई सभाएं, परंतु ये उससे भी बढ़कर है। ये एक बड़ा महान समय रहा है। मेरे जीवन की विशिष्टता वो यहाँ है और इस छोटे आराधनालय को इसकी भिन्न दृष्टि से देखा। केवल यही नहीं, परंतु भीतर से एक भिन्न दृष्टिकोण। और अब मैं बिली से पूछ रहा था, वो मुझे लेकर जाने के लिए लंबी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कहा वहाँ एक और झुंड का बपतिस्मा हुआ है जो कि इस सप्ताह 100 से ऊपर निकल गया, उन लोगों का जिनका प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ। इसलिए हम धन्यवादित हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे। और अब यदि आपके पास अपनी वाली कलीसिया ना हो तो हम आपको अपने साथ संगति करने के लिए निमंत्रण देते हैं। बस स्मरण रखें कि कलीसिया खुली है, हम कोई नामधारी नहीं हैं, और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि ये कभी भी नामधारी नहीं होगा। बस एक संगति जहां पुरुष और स्त्रियां और लड़के और लड़कियां परमेश्वर की मेज के चारों ओर मिलते हैं और वचन के साथ संगति करते हैं, और हमारे पास सारी चीजें आम हैं। अब हमारे पास एक शानदार पास्टर है, परमेश्वर का एक वास्तविक जन, और मैं इसके लिए धन्यवादित हूं। यदि आपको दर्शन याद होगा एक वर्ष पहले कि खाना एक स्थान में जमा किया गया है, और ये बिल्कुल ठीक बात है। और हम लोग, हमारे पास संडे स्कूल की कक्षाओं के लिए पर्याप्त स्थान है सारी आयु वालों के लिए, और हम इस सौभाग्य के लिए आभारी हैं। किसी ने एक बार कहा यदि उनके पास संडे स्कूल की कक्षाओं के लिए हो जहां वे अपने बालकों को भेज सकें, अब ये उनके पास है, इसलिए अब आप हमारे साथ आ जाएं यदि आपकी अपनी कोई कलीसिया नहीं है। निसंदेह यदि आपके पास अच्छी कलीसिया है जहां आप जा रहे हैं और सुसमाचार प्रचार आदि होता है, क्यों, वो हमारा दूसरा झुंड है, आप देखिए कहीं और है। परंतु यदि आपके पास कोई घर नहीं है, आप, मैं समझता हूं कि बहुत से देश के दूसरे भागों से यहां आ गए हैं कि इसे अपने घर की कलीसिया बना लें, और हम निश्चय ही आपका प्रभु के वचन के लिए स्वागत करते हैं। और मुझे याद है, मैं समझता हूं जब मैंने छोड़ा, मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ तक मेरा संबंध था यही इसी आराधनालय में होगी। अभी मुझे नहीं मालूम कि प्रभु ने मेरे भविष्य के लिए क्या ठहराया है, मैंने उसके हाथ का भरोसा किया है, ना कि कोई अंधविश्वास या कुछ। मैं दिन प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा करता हूँ कि वो मेरी अगुवाई करे उस स्थान के लिए जहाँ मैं उसकी अच्छी सेवा कर सकूँ, और जब वो पूरा हो जाए मुझसे तब मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझे घर बुला लेगा शांति में। और अब मैं आराधनालय के लोगों का उनके सहयोग के लिए आभारी हूँ। जैसा कि इस सप्ताह बिली मुझे बता रहा था मैं सोचता हूँ कि हर घर जो आराधनालय के आसपास है प्रतिनिधित्व करता है, उनके साथ कोई है। उन्होंने उनके लिए अपने घर खोल दिए और उनको अंदर ले लिया जिनके पास रुकने को जगह नहीं थी। अब ये वास्तविक मसीही व्यवहार है और कुछ घरों ने हर एक को लेकर हर छोटा कोना दे दिया ताकि लोगों को ठहरने का स्थान मिल पाए। इस कारण से ये कठिन समय है, किसी प्रकार का मामला जो चल रहा है विश्व खेल के विषय में, किसी प्रकार की बास्केटबॉल या कुछ और आरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा बड़ा झुंड, मैं सोचता हूँ इस छोटी कलीसिया में प्रतिनिधित्व किया, यहाँ लगभग 28 या 30 राज्यों का यहाँ प्रतिनिधित्व है इस कलीसिया में, बाहरी दो राष्ट्रों के अलावा। इसलिए और ये छोटी बेदारी, इसलिए इसने काफी स्थान घेर लिया है अपने में, जान जाता है। आज मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था, मैंने कहा मैं समझता हूँ यहाँ आसपास जेफरसन वेले से बहुत लोग नहीं है इस सभा में। किसी ने कहा, बोला हम अंदर ही नहीं आ सकते। भाई ये ऐसा ही था, यही कारण था। कुछ पुलिस और आदि आदि सभाओं में आना चाहते थे परंतु कहा आसपास बातें कर रहे थे, वे आए और वे अंदर नहीं आ पाए। ये समय होने से पहले ही भर गया था, इसलिए ये उनका समय था, संभव है बाद में और वे नहीं आए। इसलिए अब लोग दूसरे स्थानों से आ रहे हैं, इसलिए हम बहुत ही आभारी हैं। अब मैं नहीं जानता अगली चीज इसके पीछे आएगी, दूसरे संदेश में तुरहियां होंगी, परंतु मोहरों में व्यवहारिक रूप से हर बात शामिल है। कलीसियाई युग आए और हमने उन्हें पहले रखा जो कि विशेष थे, जो कि बहुत ही विशेष थे, परंतु उस समय अब मोहरों का खुलना दिखाता है कि कलीसिया कहाँ जाती है और इसका अंत कैसे होता है। और अब मैं सोचता हूँ कि स्वर्गीय पिता निश्चय ही हमारे लिए अनुग्रहकारी होगा कि हमें देखने दे कि हमारे पास क्या है। और मैं ये पुरानी टिप्पणियों को देखते हुए कहता हूँ जो मैंने प्रचार किया बहुत वर्षों पहले, मैं बस प्रवेश कर रहा था और जो मैंने सोचा सही है कह रहा था, ये पंक्ति से बाहर था। और अब ये सारी चारों मोहरें जो मेरे पास 20 मिनट के उपदेश में थी, सारी की सारी प्रकाशित वाक्य के चार घुड़सवार, मैंने उनको एक साथ छोड़ा और कहा, एक सफेद घोड़ा निकला, मैंने कहा संभवतः ये आरंभिक काल है और अगला घोड़ा अकाल में गया और फिर इस प्रकार से। परंतु मेरा जब वास्तव में वचन खुला ये इससे सैकड़ों मील दूर था, इसलिए ये हमारे लिए उचित है कि ध्यान दें और प्रतीक्षा करें। और हो सकता है ये इसी समय होना था कि इसे करें। बहुत सी बातें हो सकती हैं जो कि कही गई जो दूसरे लोगों के साथ सहमत होने योग्य ना हो, परंतु मैं विश्वास करता हूँ जब वो महान सिमटने वाला समय आता है और हम अपने प्रभु से मिलते हैं, आप ये पाएंगे कि ये सही था, ये वास्तव में है। अब लोग जो बाहर नगर से हैं, आसपास विभिन्न स्थानों से, विभिन्न राज्यों और राष्ट्रों से आए हैं, मैं आपकी सद्भावना की दूर से यात्रा करने की सराहना करता हूँ और अपनी छुट्टियाँ लेते हैं और उनमें से कुछ ऐसे कि रुकने का ठिकाना नहीं, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उनमें से कुछ को स्थान दिला पाया कि टिक जाएं, यहाँ तक कि खाने को पैसे भी नहीं थे कुछ भी और इस प्रकार से, और फिर भी आए जो भी हो किसी चीज की घटित होने की आशा में कि इसकी चिंता करें। और इसमें ऐसे महान विश्वास के साथ कि कोई मतलब नहीं यदि उनके पास खाना ना हो या रुकने का स्थान भी ना हो, वे इन्हें सुनने आना चाहते हैं। जो भी है ये बातें घटित हुई, ये वास्तव में भव्य है आप जानते हैं, और हर कोई इतना 100% रहा। मैं वहाँ पीछे अपने साले से मिला जो कि कलीसिया में चिनाई करने वाला है और आदि आदि, और मैं उसे इस विषय में बता रहा था कि मैंने कैसे कार्य की सराहना की है। मैं कोई राजमिस्त्री नहीं हूँ या इस विषय में कुछ भी नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ कि चौखुंटा कोना क्या है और कि ये ठीक प्रकार से बैठाया गया है। और उसने कहा मैं आपको बताऊंगा, उसने कहा ऐसा समय कभी नहीं हुआ कठिनता से कि कभी आपने ऐसी सुव्यवस्था लोगों के बीच में देखी हो जब वे सब मिलकर कार्य करते हैं। भाई वुड, भाई रॉबर्टसन और हर एक बस अपने स्थान पर, हर चीज, और भाई जिसने ध्वनि यंत्र, मेरा अर्थ लोगों को संबोधित करने का साधन, और हर चीज आराधनालय में, उन्होंने कहा हर चीज सही कार्य कर रही है। जब उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती तो वहाँ एक व्यक्ति खड़ा होगा कि इसे करे। इसलिए ये परमेश्वर इस सारी योजना में, हम इसके लिए बहुत ही धन्यवादित हैं। कलीसिया में बहुत से महान दानियों ने सहायता की कि इसे करें, जैसा कि हमारे भाई डाउच और बहन डाउच यहाँ पर बैठे हैं और बहुत से और जिन्होंने भारी दान इसके लिए दिया, और मैं सोचता हूँ ठीक समय पर उन्हें कोई जरा भी घटी नहीं और इस सारे का भुगतान किया गया, इसलिए इसके लिए बहुत धन्यवादित हैं। स्मरण रहे, ये आपकी कलीसिया है क्योंकि आप मसीह के सेवक हैं और ये इसलिए यहाँ बनाया गया है, एक खुला द्वार की सेवक बनाए और सेवकों के लिए जो पहले ही मसीह के सेवक हैं अंदर आकर और यीशु मसीह की संगति में अपने को आनंदित करें। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हर किसी का स्वागत है। और अब जब आप मुझे कभी कभी अभिषेक के समय में संस्थाओं को प्रताड़ित करते हुए सुनते हैं, मैं मेरा ये अर्थ नहीं है कि मैं आपके पास्टर के विरोध में हूँ या कलीसिया में किसी भाई या बहन के विरोध में हूँ, क्योंकि फिर भी परमेश्वर के लोग वहाँ हर संस्था में हैं, परंतु वो संस्था को स्वीकार नहीं करता, वो संस्था में व्यक्तिगत को स्वीकार करता है और ये संस्था को नहीं लेता। इसलिए जब लोग संस्था से बंद जाते हैं तब वे कुछ नहीं देख सकते सिवाय वो जो कलीसिया कहती है आप देखिए, और इससे दूसरों के साथ अलगाव आ जाता है। ये वो पद्धति है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ और ये सांसारिक मामला है, परमेश्वर ने कभी नहीं ठहराया। इसलिए अब मेरा अर्थ किसी व्यक्ति से नहीं, कैथोलिक, यहूदी, ये जो भी है, या मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कोई संस्थाएं नहीं, और बिना नामधारी और सब परमेश्वर के बालक वहाँ बैठे हुए हैं, समझे। और बहुत सी बार मैं विश्वास करता हूँ कि वे वहाँ पर किसी उद्देश्य से हैं कि उजियाला दें, उन पहले से ठहराए हुओं को खींच लें, वहाँ हर जगह आसपास में हैं, और उस महान दिन में तब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उस महान सभा के समय हवा में बुलाई जाएगी और हम सब उससे मिलने को ऊपर हवा में जाएंगे। और मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है, और आज रात्रि अंततः अंतिम रात्रि जैसा कि अक्सर हर कोई है चंगाई सभा में, मैं आशा करता हूं कि महान चीजें होंगी इस चंगाई सभा में जो कि उन्हें तनाव अधीरता में ले आती हैं। और तब मैं आज रात्रि उस चीज को पाता हूँ कि हर कोई देखने की आशा में है कि कैसे, और हर रात्रि ये इसी प्रकार रहा उन मोहरों के खुलने पर। अब मैं इसे वास्तव में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हर बार कि ये मोहरें स्थान पर आती हैं, हर चीज जो मैंने कभी उन पर विश्वास किया और दूसरे लोगों को पढ़ा उससे जो मेरे पास कमरे में आया विरुद्ध है। और मेरा मस्तिष्क इस समय कारण की चंगाई सभा इस प्रातः मैंने रखी क्योंकि मेरा मानव मस्तिष्क मेरे अपने से मेरे विचारों से इतना दूर है। मैंने कमरे में रुके रहने की कोशिश की, पर्दे खींचकर और बत्ती जलाई, ये आठवां दिन है और यहाँ तक कि अपनी कार में भी नहीं गया कि कहीं जाऊँ। मुझे कुछ भाइयों के साथ जाना पड़ा वहाँ बैंक में हस्ताक्षर करने को और कुछ नोट और चीजों पर, पैसों पर और चीजें जो इस कलीसिया के लिए उधार ली गई थी, परंतु मैं सीधा वापस आया और सीधा अध्ययन में चला गया। और आश्चर्यजनक बात कि किसी भी एक व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, या अधिकांश वे खटखटाते हैं और खींचते हैं और आसपास, वहाँ एक भी ऐसी बात नहीं हुई। ये बहुत ही अद्भुत है। जहाँ की मैं भाई वुड के साथ यहाँ खा रहा था, वो स्थान अधिकतर आसपास कारों से भरा रहता है और उनके पास 8-10 विभिन्न लोग आकर उनके पास टिकते हैं। इस समय के चलते उनमें से एक भी नहीं आया। तब इस सुबह, मैं इस सुबह को कभी नहीं भूलूंगा कि हमारे बचाने वाले का अनुग्रह उसके थके टूटे हुए दास पर, जब मैं बेचारे लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था और अपने अच्छे समझ से सोचते हुए कि मैंने ठीक किया है, और अचानक से जैसे कि यदि मुझे किसी बालक से कुछ ले लिया गया हो, मैं इतना दोषी था, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या था। और मैंने सोचा हो सकता है मुझ पर चंगाई सभा का दबाव है, हो सकता है कोई गंभीर रूप से बीमार है कि मुझे तभी प्रार्थना करना है, और मैंने श्रोता मंडली से पूछा। कुछ ही मिनटों में ये प्रकट हो गया था और किसी ने कहा क्या आप अपना पढ़ेंगे, अपना मूल पाठ पढ़ें या कुछ। और उस समय मैंने कागज का टुकड़ा उठाया और उसे फिर से पढ़ा, देखिए उसने क्या कहा, और पुस्तक पर देखा, ये तो बिल्कुल भिन्न था प्रश्न जिसका मैं उत्तर दे रहा था, समझे। मैं इसे आप तक पहुंचा दूं, जब अलौकिक अंदर आता है ये मसीह का स्वभाव है, आप अपने विचारों से बहुत दूर होते हैं जब तक कि आपके विचार में मैं इसे स्पष्ट करने की कोशिश ना करूं क्योंकि मैं नहीं कर सकता, समझे, मैं ये नहीं कर सका, इसे कोई भी नहीं कर सका। कैसे वो मनुष्य सका, ये एलिया है वहाँ पहाड़ पर खड़ा हुआ है परमेश्वर की उपस्थिति में और स्वर्ग से आग नीचे ले आता है और फिर आग के पीछे वर्षा और फिर आकाश को बंद करता है और 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और फिर वापस जाकर बारिश को बुलाता है उसी दिन और अभिषेक की अधीनता में कैसे और 400 पुजारियों को लेकर और उन्हें मार डालता है और फिर जंगल को भाग जाता है अपने जीवन के लिए चिल्लाता है एक स्त्री की धमकी पर समझे इजाबेल उसने शपथ खाई थी कि वो उसका प्राण ले लेगी जब आहाब और सारे वे वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति को देखने के लिए वहाँ थे और एक महान आश्चर्यकर्म हुआ देखिए उसका आत्मा उसे छोड़ गया उसकी स्वाभाविक विधि से सोचने में वो नहीं जान पाया कि कैसे सोचे देखिए अपने लिए नहीं सोच सका और याद करें स्वर्गदूत ने उसे नींद में डाल दिया उसे विश्राम दिया उसे उठाया उसे कुछ रोटियां दी और फिर से सुला दिया और उसे विश्राम दिया और उसे उठाया और उसे फिर से रोटियां दी और हम नहीं जानते कि उस मनुष्य का क्या हुआ 40 दिनों तब उसे एक गुफा में बुलाया गया और कहीं और परमेश्वर ने उसे बुला लिया अलौकिक की व्याख्या करने का यत्न ना करें आप ये नहीं कर सकते समझे करने के लिए केवल एक चीज है आगे बढ़ते जाएं और मैंने अपने को स्पष्ट करने का यत्न किया है जैसा कि मैं कर सकता हूँ परंतु अब से मैं सोचता हूँ मैं अब कभी फिर कोशिश नहीं करूँगा आप बस पूरी रीति से विश्वास करेंगे या नहीं और मैं आप देखेंगे थोड़ी देर बाद क्यों अब मैं ईमानदार होने का यत्न कर चुका हूँ परमेश्वर ये जानता है और वो प्रश्न इस प्रातः मैं इसका उत्तर देने का यत्न कर रहा था जितनी ईमानदारी से मैं जानता हूँ कैसे मैंने बस पद का पहला भाग पढ़ा और ये एक था ठीक नहीं होगा परंतु पवित्र आत्मा समझ रहा था कि मैं मेरा मस्तिष्क देखें पिछले 2 या 3 दिनों से क्या घटित हो रहा था देखिए मैंने 700 कह दिया 7700 इस प्रातः कोशिश कर रहा था और ये लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया देखिए और इसने ये दिखाया कि आप ध्यान दे रहे थे अब दूसरा वाला जहां मैं ये कहने का यत्न कर रहा था पंडुकी और मैंने इसे मेमना कह दिया परंतु ठीक वही पकड़ लिया और फिर यहाँ एक जो मैं नहीं पकड़ पाया पवित्र आत्मा पीछे घूम कर पलटा और मुझे इस पर ध्यान दिलाया ये दुगनी पुष्टि है कि ये बातें ठीक हैं। वे लोग परमेश्वर इस पर ध्यान दे रहा है कि देखे कि ये सही है ये ठीक बात है वो चाहता है कि आप जाने कि ये सत्य है वही है जो इसे भेज रहा है क्योंकि निश्चय ही नहीं था ये मेरे लिए ऐसे ही था एक सीखना जैसे कि ये आपके लिए था और इस प्रकार मैं इस ज्ञान के लिए बहुत आभारी हूँ कि अब प्रभु को जानूं कि किस घड़ी में हम जी रहे हैं देखिए ठीक समय के अंत में जी रहे हैं कलीसिया के ठीक चले जाने के पहले अब जरा हम बातें कर रहे हैं इसलिए आइए उसकी आशीषों को उसके वचन पर फिर से मांगे हमारे स्वर्गीय पिता यहाँ हम इस महान रात्रि में आते हैं एक महान घड़ी कि जब महान बातें घटी हैं ये चारों ओर लोग और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि बिना किसी संदेह की छाया के ये मालूम पड़ जाएगा लोगों के हृदय और मस्तिष्क में कि वे जान जाएंगे कि परमेश्वर अब भी सिंहासन पर है और कि वो अपने लोगों से अब भी प्रेम करता है और ये घड़ी है वो घड़ी जिसकी संसार देखने की लालसा करता है अब आ रही है क्योंकि ये छुटकारे के लिए चिल्ला रहा है हम देख सकते हैं अनुकूल वातावरण तैयार है कि इसे वापस लाए हम देख सकते हैं अनुकूल वातावरण तैयार है कि कलीसिया को मसीह की उपस्थिति में लाए हम देख सकते हैं कि कलीसिया रूप धारण कर रही है विवाह के वस्त्र को पहन रही है तैयार हो रही है हम बत्तियों को टिमटिमाते हुए देख सकते हैं हम जानते हैं कि हम अंत पर हैं अब स्वर्गीय पिता जैसे कि अब इसे प्रचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं या इस महान घटना को सिखाने को जो कि महिमा में घटित हुई कुछ 2000 वर्षों पहले और उस प्रिय चेले को दिया गया था यूहन्ना को और आज रात्रि हमें इस पर बोलना है अब पवित्र आत्मा प्रकाशन की जोरदार शक्ति में सामने आए ताकि हम पर उन चीजों को प्रकट कर सके जो वो हमको चाहता है कि हम जाने जैसा कि वो पिछली कुछ रात्रियों में था हम अपने आप को आपको वचन के साथ समर्पित करते हैं यीशु के नाम में आमीन अब जैसा कि आप अपनी बाइबलों में निकालना चाहते हैं और ये बस एक छोटा सा पद है वचन का एक पद, परंतु ये अंतिम पद ये पाया गया, बल्कि अंतिम मोहर। अब पिछली रात्रि हम छठवीं मोहर पर बोल रहे थे। पहली मोहर का परिचय मसीह विरोधी के रूप में किया गया, उसका समय चला और हमने देखा वो कैसे गया, कैसे वो पशु जिसका परिचय दिया गया परमेश्वर की सामर्थ पर, जो कि मसीह विरोधी के साथ उसका मुकाबला करने के लिए गया। मैं विश्वास नहीं करता कि इस विषय में किसी के मस्तिष्क में कोई प्रश्न हो सकता है। और हम पाते हैं ये तुरंत ही कलीसियाई युग के बाद है, वे पशु गए, हमने पाया उसमें होकर निकले, वहाँ हमने सारा चित्र बदल दिया और कोई पशु निकल कर नहीं आए, समझे? परंतु इसका परिचय कराया गया था, सामने आ रहा था, वहाँ विपत्ति काल में कलीसिया के चले जाने के पश्चात। कलीसियाई काल में ये कैसे सही सिद्ध बैठता है, मैं रत्ती भर भी नहीं देखता, एक भी चीज जो ठीक नहीं बैठती, यहाँ तक कि काले और हर चीज और समय। इस पर सोचें, ये दर्शाता है ये परमेश्वर ने ही किया है, मनुष्य मस्तिष्क इसकी था नहीं ले सका। और अब हम ये पाते हैं कि ये भी हम प्रभु के वचन को लें, पवित्र वचन को, जो यीशु ने कहा कि वो घटित होगा, और हम इसे कैसे भी पाएंगे, और यहाँ आकर और प्रकट करता है और इसे बिल्कुल सही में उसका उपदेश, वहाँ इसका उत्तर देता है, ठीक बिंदु पर लाता है, छह मोहरों में, परंतु वो सातवीं को छोड़ देता है, समझे? तब जब मोहरें खोली गई थीं, परमेश्वर यहाँ पर ध्यान दे, उसने यहाँ तक कि कोई प्रतीक सातवीं वाली का नहीं दिया, समझे? ये परमेश्वर के पास पूरी रीति से गुप्त है। ध्यान दें, अब हम बाइबल में पढ़ने जा रहे हैं सातवीं मोहर में, जो कि प्रकाशित वाक्य के आठवें अध्याय में पाया गया है। जब उसने सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। इस पर केवल इतना ही हमारे पास है। अब हम ध्यान देने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे, अधिक देर तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप में से बहुतों को यात्रा करनी है, अभी आज रात्रि घर जा रहे हैं। और मैंने फिर सोचा कि इस प्रातः चंगाई सभा करूं, जिससे कि आप सुबह जा पाएं और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। और अब हम और मैं भी, मुझे भी टूसान एरिजोना की यात्रा करनी है, जहां मैं रहता हूं, और अब ये मेरा घर है। और फिर मैं यहां वापस आना चाहता हूं, प्रभु ने चाहा तो। परिवार जून में कुछ दिनों के लिए आना चाहता है, और अब हो सकता है मैं आपसे यहीं मिलूंगा एक सभा उस समय में। मेरी अगली सभा एलबी कर्क्यू न्यू मैक्सिको में निर्धारित है। मैं सोचता हूँ ये 9, 10 और 11 है। मैं वहाँ वीरवार और गुड फ्राइडे पर हूँगा, इसलिए मुझे सारी चीजें लेनी थी, और ये मेरे साथ भी नियोजित सभाएं जिन्हें उस समय तक नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं वीरवार रात्रि और शुक्रवार रात्रि एल्बुकर्की मेक्सिको में हूँगा ही। और फिर वो अगली जानकारी लगभग बंद है, हम निश्चित रूप से नहीं जानते। ये मेरे अच्छे मित्रों के पास है, आधी रात का शोर मचाने वाला झुंड यहाँ दक्षिणी पाइन नॉर्थ कैरोलिना में, और अब इस समय वे फोन पर हैं, जिसके लिए उन्होंने टेलीग्रामों से संदेश भेजा और सारी बातें, और इस समाप्ति पर आ रहे हैं दूसरे झुंड के लिए लिटिल रॉक पर, यीशु नाम के लोग जिनके साथ मेरे सभा काओ पैलेस में पिछली गर्मियों में हुई थी। वे अपनी बेदारी सभा लिटिल रॉक अरकनसास में कर रहे हैं, और पिछले वर्ष से कम एक रात्रि की सभा चाह रहे हैं, या कुल मिलाकर चाहते हैं, परंतु वो यहाँ तक कि एक रात्रि के लिए भी तैयार होंगे, और इसलिए मैंने उन्हें बता दिया नाम मालूम होते हुए क्या करना है। मैंने कहा वे इसके लिए संभावित विज्ञापन कर सकते हैं, तब वे इसे थोड़ा बाद में बता सकते हैं। क्या उसने अभी फोन किया है? ओ ठीक है, क्या कहता है? हॉट स्प्रिंग, यही मैंने गलती की थी, 24 मई 24 से 28 जून, अब ये घोषणा हो गई है, संभावित है, यही प्रभु की इच्छा है। देखिए, मैं होऊंगा, यहाँ वो कारण है मैं इन बातों को करना पसंद करता हूँ, आपको थोड़े समय बाद मालूम हो जाएगा। अब देखिए, जब मैं एक स्थान में जाता हूँ, मैं अपने पाँव को यहाँ ये जानते हुए रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा है वहाँ जाओ। तब यदि शत्रु कहीं पर खड़ा होता है, मैं कहता हूँ मैं यहाँ प्रभु यीशु के नाम से हूँ, पीछे हट जा, समझे। और आप अपने स्थान पर निश्चित हैं। देखिए, जब वो आपको कहीं भेजता है, वो आपकी चिंता करेगा। समझे, परंतु यदि आप मान कर जाते हैं तो मैं नहीं जानता, हो सकता है वो वहाँ ना हो, इसलिए जितना हो सकता है मैं निश्चित होना चाहता हूँ। मैंने बहुत से लिए, उसने मुझे लेने को नहीं कहा, परंतु मैं जहाँ तक संभव हो निश्चित होना चाहता हूँ। अब प्रभु आप सबको आशीषित करे। अब हम ध्यान देते हैं, ये बस एक पद है, हम थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पहले थोड़ा सा आप ध्यान दें, हमने सातवां अध्याय छोड़ दिया, छठवां अध्याय, छठवीं का अंत है, छठवीं मोहर का, परंतु छठवीं मोहर और सातवीं मोहर के बीच वहाँ कुछ घटित होता है, समझे? और कितने प्यारे ढंग से इसे वहाँ पर रखा गया है, छठवें और सातवें अध्याय के बीच। अब आप ध्यान दें, सातवें अध्याय में हम ध्यान देते हैं, छठे और सातवें के बीच में वहाँ मध्यांतर है, एक मध्यांतर प्रकाशित वाक्य पुस्तक के छठवें और सातवें अध्याय के बीच, और ये मध्यांतर छठवीं और सातवीं मोहर के बीच में दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस पर ध्यान दें, ये बहुत ही विशेष है कि हमने इसे छोटे समय पर ध्यान दिया। अब स्मरण रखें, प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय के बाद कलीसिया जा चुकी है, चार घुड़सवारों के निकल जाने के बाद कलीसिया जा चुकी है, समझे? हर चीज जो कलीसिया के लिए घटित हुई ये प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय तक हुआ, हर चीज जो मसीह विरोधी के कार्य में हुई चौथे अध्याय तक गई, और प्रकाशित वाक्य की चौथी मोहर दोनों मसीह विरोधी और मसीह के लिए समाप्त हो गई, और मसीह विरोधी अपने नाश पर आता है और अपनी सेना के साथ, और मसीह अपनी सेना के साथ आता है। ये वो पुराना युद्ध है जो समय से पहले आरंभ हुआ, और तब वे शैतान और उसके दूतों को लात मारकर निकाला गया, और तब वे पृथ्वी पर आए, और फिर युद्ध आरंभ हो गया क्योंकि हवा ने वो रुकावट तोड़ दी जहाँ से उसे अलग रखा गया था परमेश्वर के वचन के पीछे, और तब उस घड़ी से शैतान ने परमेश्वर के वचन के ऊपर युद्ध को जीत लिया, क्योंकि उसकी प्रजा का एक उस निर्बल ने बाड़े को गिरा दिया, और ठीक किसी प्रकार से उसने हर बार युद्ध को जीता है, क्योंकि उसकी प्रजा का एक उसने बाड़े को वचन से गिरा दिया, और ये कलीसियाई काल के अंत में किया गया उस संस्था तंत्र के द्वारा होते हुए, जो कि वास्तविक मूल जीवित परमेश्वर की पवित्र कलीसिया झूठे घुड़सवारों के साथ वचन को स्वीकार नहीं करेंगे और कलीसिया को वचन से धर्म सिद्धांत की ओर मोड़ देंगे। अब कितने इस बात को जानते हैं कि ये धर्म सिद्धांत है जिस पर रोमन कैथोलिक कलीसिया बनी है, क्या वे इसे नहीं मानते? बिल्कुल निश्चय ही वे इसे मानते हैं। इतना ही सब नहीं, कैथोलिक निश्चय ही ये उनकी भावनाओं को थोड़ी भी ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वे ये जानते हैं। उन्होंने हाल ही में एक नया जोड़ा है, यहाँ अधिक समय नहीं हुआ कि मरियम जी उठी थी, आपको याद है कुछ वर्षों पहले, लगभग 10 वर्ष पहले, कितनों को ये याद है, वहाँ अखबार में निश्चय ही, समझे? हर चीज एक नया धर्म सिद्धांत, देखिए ये सब धर्म सिद्धांत है न कि वचन, समझे? हाल ही में एक पादरी अपने साक्षात्कार में उसने कहा, श्री ब्रणम, उसने कहा परमेश्वर अपनी कलीसिया में है, मैंने कहा परमेश्वर अपने वचन में है, उसने कहा हमें विवाद नहीं करना चाहिए, मैंने कहा मैं तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वक्तव्य दे रहा हूँ, परमेश्वर अपने वचन में है, ये ठीक है, कोई भी जो इसमें कुछ निकालेगा या इसमें कुछ जोड़ेगा कहे हुए वचन में, उसने कहा भाई परमेश्वर ने दिया, मसीह ने अपनी कलीसिया को अधिकार दिया है, और उन्हें बताया वे जो भी पृथ्वी पर बांधते हैं स्वर्ग में बांधा जाएगा, और क्या, मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक सत्य है, उसने कहा हमारे पास है इस सिद्धांत पर, हमारे पास सामर्थ्य है कि पाप को छुड़ाए, और मैंने कहा यदि आप ये करेंगे जिस प्रकार से ये कलीसिया को दिया गया है और जिस प्रकार से उन्होंने किया, मैं इसे स्वीकार करूंगा, यदि आप करते हैं, यहाँ जल है कि आपके पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, समझे? समझे, ये ठीक वैसे ही, ध्यान दें, पतरस चाबियों के साथ पेंतिकुस्त के दिन, याद रखें उसके पास कुंजियां थीं जिसके विषय में वे बातें कर रहे हैं, और उन मनुष्यों ने कहा पुरुषों और भाइयों हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, पतरस ने कहा तुम में से प्रत्येक प्रायश्चित करे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, किस लिए, पापों की क्षमा के लिए, और तब आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारे बालकों से जो दूर दूर हैं, जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाएगा, ये ठीक बात है। इसलिए ये सदा के लिए तय हो गया, ये सब पूरा हुआ, इसने ये किया। अब परंतु आप देखिए, मसीह विरोधी अंदर आता है, जैसे कि हमने चित्रित किया और इसे दर्शाया। क्या ही प्रकाशन है। ओ, और इन सारे वर्षों में सोचना, हमने इसे बढ़ते हुए देखा, और यहाँ ये पूरी रीति से सीधा सीधा यहोवा यूं कहता है। अब और अब हम इस मध्यांतर पर ध्यान देते हैं, छठवें और सातवें अध्याय के बीच में। अब यहाँ प्रकाशित वाक्य का सातवां अध्याय एक घटना को प्रकट करता है। ये यहाँ बिना किसी अर्थ के नहीं है कि यहाँ इसके बीच में बिन बात के रखा है, समझे। ये यहाँ एक उद्देश्य के लिए है, और ये प्रकाशन किसी चीज को प्रकट करता है। ध्यान दें कितना भेद भरा और कितने हिसाब से ये यहाँ वचन में ठीक बैठाया है, समझे, बिल्कुल ठीक। क्या आप परमेश्वर के गणित में विश्वास करते हैं? यदि आप नहीं रखते तो आप निश्चय ही इसमें खो जाएंगे, निश्चय ही आप वचन में भटक जाएंगे। यदि आप चार या छह रखना आरंभ कर देते हैं या कुछ बजाय हिसाब के वचनों से जो क्रम में चल रहे हैं, तो निश्चय ही आपके दृश्य में गाय पेड़ की चोटी पर घास खा रही है, कहीं भी निश्चय ही आप भटक जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं करता। उसका सारा वचन पूरी रीति से गणित में दौड़ता है। जी हाँ श्रीमान, सिद्ध, बहुत ही सिद्ध। कोई भी साहित्य इस प्रकार से नहीं लिखा गया जैसे ये, गणित में बहुत ही सिद्ध, गणित में। अब वो केवल आठवां अध्याय दृश्य को प्रकट करता है, सातवीं मोहर के दृश्य को, जहाँ कुछ भी प्रकट नहीं किया गया। अब कुछ नहीं सातवीं मोहर में प्रकट नहीं किया गया। अब इसका प्रकाशित वाक्य सातवें अध्याय से कोई मतलब नहीं। ये सातवीं मोहर को प्रकट कर रहा है, ये बिल्कुल शांत है। और यदि मेरे पास केवल समय होता, मैं कुछ स्थानों में दिखाने की कोशिश करूंगा, पीछे उत्पत्ति से लेकर ये सातवां अध्याय या ये सातवीं मोहर बोली गई है, आरंभ से ही उत्पत्ति में ये सातवीं मोहर, ये मोहरें आगे बढ़ती गईं। क्या आप स्मरण कर सके, इस प्रातः इन बातों को सामने ला रहा है, और आज रात्रि ध्यान दें, उन्हें सामने ला रहा है, और आप पाते हैं जब ये सातवीं मोहर पर आता है वो रुक जाती है। जी हाँ, यीशु मसीह अपने में बोल रहा है, अंत समय के लिए बताया, और जब उसे मिला सारी छह मोहरें बता दी, जब वो सातवीं पर आया वो रुक गया। देखिए ये यहाँ पर है, ये एक महान बात है। अब हम इस सातवें अध्याय पर बोलने जा रहे हैं, एक मिनट, इसे एक प्रकार से जोड़ना छठवीं और सातवीं के बीच, क्योंकि केवल यही सामग्री है जिस पर हमें जाना है। ठीक इस समय छठवीं मोहर है, छठवीं और सातवीं मोहर के बीच इज़राइल का बुलाया जाना। अब मेरे बहुत से अच्छे यहोवा विटनेस के मित्र हैं, यहाँ बैठे हुए हैं बस, या रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ अब भी यहोवा विटनेस हों, परंतु उन्होंने सदा श्री रसल ने जो किया उसे ही लागू किया। ये 144,000 का अलौकिक मसीह की दुल्हन होना, समझे, वे ये नहीं है, इसका कलीसियाई युग से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये पूरी रीति से इजरायली हैं। अब हम कुछ मिनटों में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये मध्यांतर छठी मोहरों के बीच बुलाया जा रहा है और मोहर बंद किया जा रहा है। इन 144,000 यहूदियों को पीड़ा काल में बुलाया गया, कलीसिया के चले जाने के बाद, समझे, इसका कलीसिया युग से कुछ भी लेना देना नहीं है। ओ, बुलाए गए और सिद्धता के साथ पवित्र वचन के साथ एक सामंजस्य में हैं। डेनियल के अंतिम 3.5 सप्ताह जो डेनियल के लोगों के लिए ठहराए गए, देखिए, अन्य जाति के लिए नहीं, डेनियल के लोग, और डेनियल एक यहूदी था। अब इसराइल पर ध्यान दें, इसराइल केवल अपने भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है, और जब वो प्रमाणित हो जाता है और कलीसियाई युग में से होते हुए कहीं नहीं, जब से आरंभ के चेलों की कलीसिया, प्रोटेस्टेंटों की कलीसिया में कभी कोई नबी नहीं था, मुझे बताएं वो कौन था और मुझे दिखाएं, कभी नहीं। उनके पास प्रारंभिक प्रेरित युग में थे एक अगबुस था जो कि प्रमाणित भविष्यद्वक्ता था, परंतु जब अन्य जाति अंदर आए परमेश्वर के उत्तराधिकारी होने को और पौलुस अन्य जाति की ओर फिर गया पतरस के बाद, जैसा हमने बीती रात्रि में पढ़ा, प्रभु से प्राप्त किया, वो अन्य जातियों में से लोगों को अपने नाम के लिए ले रहा था, उसकी दुल्हन। तब से इतिहास के पन्नों पर उनके पास अन्य जाति का भविष्यद्वक्ता कभी नहीं था। अब आप जरा पीछे इतिहास में से होकर निकलें और ढूंढें, क्यों? ठीक, ये वचन के विरोध में होगा। बिल्कुल सही, जब पहले वाला निकला एक सिंह था, ये परमेश्वर का वचन था। तब अगला वाला गया, कार्य था, बलिदान। अगला आया, एक मनुष्य की चतुराई था। परंतु हमसे प्रतिज्ञा की गई है कि अंत के दिनों में ये कलीसिया में फिर वापस आएगा, हर चीज को सही करने के लाभ के लिए, जिससे भटका दिया गया, चूक गए, अधूरा अधूरा छोड़ा गया, क्योंकि इस बात की भविष्यवाणी की गई कि यहाँ सातवें दूत का संदेश परमेश्वर के हर भेद को समाप्त कर देगा। और फिर हमने इस सब में से होकर देख लिया है, हम ये देखते हैं कि पूरी रीति से ये वचन के साथ सामंजस्य में है, यही कारण है। अब क्या आप कल्पना कर सकते थे जब ये व्यक्ति दृश्य में आता है, जब वो ये करता है? स्मरण रखें, ये इतना नम्र होगा और चीजें यहाँ तक कि कलीसिया इसे बहुत दूर से चूक जाएगी। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कलीसियाएं अब भी सुधारकों के रीति रिवाजों की अधीनता में हैं? कभी परमेश्वर की ओर से एक भविष्यद्वक्ता को स्वीकार करेंगे जो कि दृढ़ता से उनकी शिक्षा और संस्थाओं के विरोध में होगा? अब यहाँ केवल एक ही व्यक्ति ये पूरा कर सकता है, केवल एक आत्मा जो कभी इस पृथ्वी पर था, जिसको मैं जानता हूँ। या तो इस समय ये एलिया होगा, और इसकी भविष्यवाणी की गई थी कि ये होगा, जो कि सिवाय मसीह के आत्मा को छोड़ और कुछ नहीं है। जब मसीह आता है वो परिपूर्णता था, वो भविष्यद्वक्ता था, वो भविष्यद्वक्ताओं का परमेश्वर था, समझे? समझे, मसीह, देखिए उन्होंने उससे कैसे घृणा की, परंतु वो ठीक उसी प्रकार आया जैसे वचन ने कहा कि वो आएगा। परंतु ये होते हुए वो एक भविष्यद्वक्ता था, उन्होंने स्वयं अपने लिए परमेश्वर के राज्य की भर्त्सना की। परमेश्वर के आत्मा जो कि विचारों को परखने वाला और आदि आदि था, एक प्रेत आत्मा कहा वो एक था, वो भावी बताने वाला था, या एक शैतान, यही भावी बताने वाला एक शैतान है। देखिए, शैतान का आत्मा निश्चय ही, क्या आपको मालूम है? निश्चय ही भावी बताना एक भविष्यद्वक्ता की नकल है, जो कि पूरी रीति से परमेश्वर के सामने ईश निंदा है। अब ध्यान दें, वचन के साथ सिद्ध सामंजस्य में बुलाया, डेनियल के अंतिम 3.5 वर्षों में। ध्यान दें, इसराइल के विश्वासी पुराने नियम में केवल विश्वासियों को बताया गया कि जब भविष्यद्वक्ता प्रमाणित हो जाए तो अपने भविष्यद्वक्ता का विश्वास करना। यदि तुम्हारे बीच में कोई हो जो कि आत्मिक हो या एक भविष्यद्वक्ता हो, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर उस पर अपने को प्रकट करूंगा और उससे दर्शनों में, स्वप्नों के द्वारा, स्वप्नों के अनुवाद के द्वारा बातें करूंगा। किसी को स्वप्न आता है, भविष्यद्वक्ता योग्य होगा कि उसका अर्थ बताए, और यदि उसे दर्शन मिला तो वो इसको बोलता है। मैं उस पर अपने आप को दर्शनों और स्वप्नों के द्वारा प्रकट करूंगा, और यदि जो वो कहता है घटित हो जाए तो उस भविष्यद्वक्ता की सुनना, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। यदि ये नहीं होता तो फिर उसकी ना सुनना। जी हाँ, ये ठीक बात, अलग हो जाओ, उसे बस छोड़ दो। देखिए, अब इसराइल सदा इसका विश्वास करने जा रहा है, और क्या आप नहीं देखते? क्यों? अब मैं चाहता हूँ कि आप इस अच्छे पाठ को आज रात्रि पकड़ लें। अब क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा उनके लिए है। मैं चिंता नहीं करता कि अन्य जाति वहाँ जाकर कितनी भी पुस्तकें बांटते रहें। मैं चिंता नहीं करता आप अपनी बगल में बाइबल लेकर कितना भी वहाँ जाएं, ये और वो प्रमाणित करते रहें, वे सिवाय भविष्यद्वक्ता के कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ही केवल एक होता है जो दिव्य वचन को ले सकता है और उसे उसके स्थान पर रखता है, और एक प्रमाणित भविष्यद्वक्ता होना है, वे इसका विश्वास करेंगे। ये ठीक बात है। मैं यहाँ बेंटन हार्बर में एक यहूदी से बातें कर रहा था, जब वो जॉन रेन, जो अपने जीवन भर अंधा रहा, लगभग अपनी दृष्टि को पाया। वे मुझे वहाँ लेकर गए, उस डेविड के घर में, और ये रब्बी अपनी लंबी दाढ़ी के साथ आया। उसने कहा, किस अधिकार के द्वारा तुमने जॉन रेन को उसकी दृष्टि दी? मैंने कहा, यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर का पुत्र। उसने कहा, परमेश्वर से ये बात दूर रहे कि उसके पुत्र हो, समझे? और उसने कहा, तुम लोग परमेश्वर को तीन टुकड़ों में नहीं काट सकते और उसे यहूदी को दें, उसमें से तीन परमेश्वर बनाए। तुम मूर्ति पूजकों का झुंड हो। मैंने कहा, मैं उसे तीन टुकड़ों में नहीं काटता। मैंने कहा, रब्बी, क्या ये बात तुम लोगों के लिए विचित्र नहीं होगी कि तुम ये विश्वास करो कि भविष्यद्वक्ताओं में से एक कुछ गलत बताता है? उसने कहा, हमारे भविष्यद्वक्ता कुछ भी गलत नहीं बताते। मैंने कहा, यशाया 9:6 किस विषय में बोल रहा था? उसने कहा, मसीहा के। मैंने कहा, तो फिर मसीह मनुष्य भविष्यद्वक्ता होगा, क्या ये ठीक बात है? कहा, जी हाँ श्रीमान, ये ठीक बात है। मैंने, मुझे दिखाओ यीशु कहाँ पर छूका? उसने कहा, मैंने कहा, मसीह भविष्यद्वक्ता का परमेश्वर से क्या संबंध है? उसने कहा, वो परमेश्वर होगा। मैंने कहा, ये ठीक बात है। अब आप ये वचन पर आ गए, इस प्रकार मेरी सहायता की। वो यहूदी वहाँ खड़ा था और आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। कहा, मैं आपसे बाद में सुनूंगा। मैंने कहा, रब्बी, आप ये विश्वास करते हैं? और उसने कहा, देखिए, उसने कहा, परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। मैं जान गया कि वो नए नियम में था। मैंने कहा, रब्बी, ये ठीक बात है, अब इस विषय में क्या है? उसने कहा, यदि मैं ये प्रचार करता हूँ तो मैं वहाँ नीचे होऊंगा। आप जानते हैं, उनका स्थान वहाँ पहाड़ पर था। वहाँ नीचे सड़क पर अपनी रोटी मांग रहा हूँ। मैंने कहा, मैं नीचे अपनी रोटी मांग रहा हूँ, बजाय कि यहूदी का हाथ अब भी पैसों पर है। आप जानते हैं, देखा, बल्कि मैं चाहूंगा, और उसका नाम सोने से उस पर। मैंने कहा, मैं नीचे होना चाहूंगा, नमकीन बिस्कुट और सोते का पानी पीऊं, और ये जानूं कि मैं परमेश्वर के साथ सामंजस्य में हूं और सच्चा, बजाय कि मेरा नाम इस इमारत पे हो, इस प्रकार सुनहरे अक्षरों में, और जानते हुए कि मैं परमेश्वर से अलग था। मैं ये जानता हूं, वो मेरी ओर नहीं सुनेगा, इसलिए वो अंदर चला गया। परंतु ये यही है, आप परमेश्वर को दो या तीन टुकड़ों में नहीं काट सकते, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहलाए और तीन परमेश्वर बनाकर और यहूदी को दें। उसकी यही आज्ञा है, मेरे समक्ष तेरा कोई दूसरा ईश्वर ना हो, मैं तेरा प्रभु परमेश्वर हूँ। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, आए इसराइल, सुन, मैं तेरा प्रभु परमेश्वर हूँ, एक परमेश्वर, न कि तीन। आप उन्हें किसी को नहीं देंगे? नहीं। कोई भविष्यद्वक्ता तीन परमेश्वरों के विषय में कभी बात करता है? नहीं, कहीं नहीं। आप इसको कभी नहीं सुनेंगे? नहीं श्रीमान, ये पागन और मूर्ति पूजक है जहाँ से ये आता है। जी हाँ श्रीमान, ध्यान दें, परंतु ये भविष्यद्वक्ता आएंगे। केवल इतना ही नहीं, वे भविष्यद्वक्ता प्रकाशित वाक्य 11 है, इसमें से हम कुछ पढ़ चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि आप अध्ययन करें, इसे पढ़ें, टेपों इत्यादि पर, वे लोग पूरी रीति से प्रमाणित भविष्यद्वक्ता हैं, भविष्यद्वक्ता के चिन्हों के द्वारा। तब इसराइल ये सुनने जा रहा है। अब आपके लिए मेरे यहोवा विटनेस के मित्रों, अब समझ लें कि इन 144,000 का दुल्हन से कोई लेना देना नहीं है। वचन का एक बिंदु भी इसका समर्थन नहीं करता। नहीं श्रीमान, वे नहीं हैं, वे यहूदी हैं, ये चुने हुए हैं, जो डेनियल के 70वें सप्ताह के अंतिम 3.5 साल के समय में बुलाए गए हैं। अब ये मैं इसका उल्लेख करता रहूंगा, आपके लिए अधिक नहीं जो यहाँ पर हैं। परंतु देखिए, लोग ये टेप सब जगह जाते हैं, आप देखते हैं और आप ये समझते हैं। आप मुझे वापस उल्लेख करते हुए सुनते हैं, ये किसी उद्देश्य के लिए है। ध्यान दें, अब देखिए, उन्हें कैसे अंधा होना था। क्या आप देखते हैं कैसे वे हुए? यीशु या परमेश्वर ने यहूदियों को अंधा करना था कि वे यीशु को ना पहचान सके। यदि वे केवल ये जानते कि उन चिन्हों को देखते हुए जो उन्होंने किए, यदि वे अपनी सही स्थिति में होते, जैसे वे पीछे व्यवस्था की अधीनता में थे जब परमेश्वर ने उन्हें एक भविष्यद्वक्ता के विषय में आज्ञा दी थी, और उन्होंने यीशु को ये करते देखा, कि वे कहेंगे, ये मसीहा है। ये क्यों था? वे जो उस युग में, वे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे थे, उसके चेले और आदि आदि, उन्होंने ये देखा और इसे पहचान लिया। उन बाकियों ने क्यों नहीं? देखिए, वे अंधे किए गए थे, वे इसे नहीं देख सके, वे इसे नहीं देखते अब भी, और वे इसे नहीं देखेंगे जब तक वो एक राष्ट्र के समान जन्म ना ले। एक बार में जो वचन असफल नहीं हो सकता, याद रहे, वचन असफल नहीं हो सकता। चिंता नहीं आपको कितनी संवेदना होती हैं और ये सब क्या घटता है, फिर भी वचन असफल नहीं हो सकता। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे परमेश्वर ने कहा था, समझे? अब हम अनुभव करते हैं, इन बातों को होना चाहिए। और यही कारण है उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, जबकि उसने अपने आप को सिद्धता से प्रमाणित किया कि वो एक भविष्यवक्ता है। यहाँ तक कि वो बेचारी सामरी स्त्री वहाँ कुएं पर खड़ी है, वो कभी भी समरिया में नहीं था। वो बस गया, बोला उसे उस मार्ग से जाना अवश्य है, और वो वहाँ गया और वहाँ एक साधारण स्त्री थी और उसकी और वो उस स्थिति में, वो अच्छी स्थिति में थी कि सुसमाचार को ग्रहण कर ले, बजाय उन धार्मिक याजकों के। उन दिनों की बातें उसने ये किया निश्चय ही। अब देखिए, परंतु उनके इस अस्वीकार के सामने फिर भी उनमें से एक सम्मानित पुरुष ने स्वीकार किया कि वे जानते थे कि वो एक गुरु था, परमेश्वर की ओर से आया। मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर के साथ बातें कर रहा था वहाँ दक्षिणी प्रांत में उसके दफ्तर में। अधिक समय नहीं हुआ, एक बहुत बढ़िया विशेषज्ञ लुइविल में, एक वास्तविक बहादुर पुरुष। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा, डॉक्टर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने आपके चिकित्सा चिन्ह पर ध्यान दिया, वो खंबा, और उस खंबे पर सांप लिपटा हुआ है, ये किस बात को दर्शाता है? उसने कहा मैं नहीं जानता। और मैंने कहा ये इसे दर्शाता है, ये दिव्य चंगाई का चिन्ह था, जहां मूसा ने पीतल के सांप को जंगल में ऊंचे पर उठाया, जो कि केवल एक चिन्ह था, सच्चे मसीह का एक मात्र चिन्ह। अब आज दवाई दिव्य चंगाई का चिन्ह है, और यद्यपि उनमें से बहुत से इसका विश्वास नहीं करते, एक वास्तविक अच्छे डॉक्टर इसका विश्वास करते हैं, परंतु उनमें से कुछ इसका विश्वास नहीं करते, परंतु यही चिन्ह जो उनके पास है सामर्थी परमेश्वर की सामर्थ को प्रमाणित करता है, भले वे इसका विश्वास करना चाहें या नहीं। समझे, ये ठीक बात है। वहाँ पीतल का सांप खंभे पर लटका हुआ है, उस चिकित्सा चिन्ह पर। अब ध्यान दें, ये यहूदी अब अंधेपन की छिलके इन लोगों की आंखों पर हैं। वे कुछ नहीं कर सकते, ये वहाँ है और परमेश्वर ने वहाँ रखा है, और ये वहाँ उस समय तक के लिए जब तक उनसे प्रतिज्ञा है, ये आने वाले भविष्यवक्ता की। आप मिशनरियों को भेज सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, इसराइल कभी नहीं बदलेगा जब तक कि वे भविष्यवक्ता दृश्य पर नहीं आते, और ये अन्य जाति की कलीसिया के उठा लिए जाने के पश्चात होगा। बैल का युग अब और सिंह की पुकार को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि बैल का आत्मा बाहर आया, और सुधारकों के युग में एक मनुष्य बाहर आया। समझे, आप बस केवल यही चीज है कि आप वे ग्रहण कर सकते हैं, यही, और वहाँ अब वे अंधे किए गए हैं, वहाँ कुल मिलाकर यही बात है। अब ध्यान दें, परंतु युग आ रहा है जब अन्य जातियां इसके साथ समाप्त हो जाएंगी। वहाँ एक वृक्ष है और जड़ें यहूदी थे, और ये काटा गया था, और अन्य जाति उसमें सांटे गए, वो जंगली जैतून वृक्ष, और वो अपने फल दे रहा है। अब जब अन्य जाति दुल्हन काटी गई, वो दुल्हन वृक्ष जिसके विषय में मैंने बातें की, और ये परमेश्वर की उपस्थिति में उठा ली गई। परमेश्वर अविश्वासी अन्य जातियों को मिटा डालेगा, यहाँ इस ओर सोती हुई कुंवारी, और फिर साटता है, उसने ये करने की प्रतिज्ञा दी है। और उस समय तक आपको मालूम होना है कहाँ, यदि आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, यदि आप नहीं जानते, क्यों आप अंधकार में ठोकर खा रहे हैं? अब ये जब यहूदियों का मत परिवर्तन हो जाएगा उस युग के चलते, अब जैसे कलीसिया युग अभिषिक्त प्रतिज्ञा के सामर्थ्य के नीचे है, वे मसीह को स्वीकार करेंगे, परंतु अब नहीं जबकि अन्य जाति अंदर हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये दो भविष्यवक्ता प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के किस प्रकार का संदेश प्रचार करेंगे। अब आप स्पष्ट रूप से ठीक देख सकते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं उन बचे हुओं के लिए, या पहले से ठहराए हुए 144,000 के लिए परमेश्वर की मोहर को लेते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ें, अब ध्यान पूर्वक सुने। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पढ़ें यदि आप सकते हैं, क्योंकि मैं इसका पीछे से उल्लेख करने जा रहा हूं। थोड़ा सा 7वां अध्याय, अब ये 6वीं और 7वीं मोहर के बीच में है। इन बातों के बाद इन मोहरों के 6वीं मोहर खुल गई थी, और ये पीड़ाओं का काल था। अब इसे हर कोई समझता है, 6वीं मोहर खुल गई थी और पीड़ाएं चल रही थी। इसके बाद क्या, मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुन्द्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। चार स्वर्गदूत। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुँचाना। दुल्हन नहीं, दासों, न कि पुत्रों, दासों। इज़राइल सदा से परमेश्वर के दास रहे हैं। कलीसिया पुत्र है, देखिए, जन्म के द्वारा इज़राइल उसका दास है। ध्यान दें, हर स्थान पर ये सदा से है। अब्राहम उसका दास था, हम लोग दास नहीं हैं, हम लोग बालक, पुत्र और पुत्रियां, जी हाँ, के हमारे परमेश्वर की उनके माथे पर। अब ध्यान दें, हमारे परमेश्वर की उनके माथे पर। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। अब मैं चाहता हूँ कि अब आप ध्यान से सुने इसको पढ़ते हुए। इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मोहर दी गई। ये बिल्कुल ठीक उन नामों को लेता है। अब यदि ऐसा हो, ब्रिटेन इज़राइली परखने वाला यहाँ बैठा है, सुनिए कैसे ये हवा को बाहर कर देता है। देखिए, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। गोत्रों को बुलाया, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर। अपने पर ध्यान दें, अब अपने गोत्र पर ध्यान दें। अशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे 12,000, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, इसाकार के गोत्र 12,000, इसाकार मैं समझता हूँ आप यही उच्चारण करते हैं, 12,000, जुबलून के गोत्र में से 12,000, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, और सारे के, बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। अब वहाँ 12 गोत्र हैं। एक गोत्र में से 12,000, 12 × 12 क्या है, 144,000। अब ध्यान दें, ये सब इज़राइल के गोत्रों में से हैं। अब ध्यान दें, इसके बाद अब यहाँ दूसरा झुंड आता है। दुल्हन जा चुकी है, हम ये जानते हैं, परंतु ध्यान दें, अब ये झुंड आता है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने की जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत किया, कह रहे हैं, आमीन, हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ, शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीन में से एक, अब वो यहाँ प्राचीनों के सामने है जैसा कि हमने उसे देखा, इन सारी मोहरों में से होते हुए प्राचीनों में से एक ने उत्तर देकर मुझसे कहा, ये कौन है। अब यहुन्ना यहूदी होने के नाते अपने लोगों को पहचानता है, उसने उन्हें गोत्र के रूप में देखा, क्या ये ठीक बात है, उसने पहचान लिया और हर गोत्र का नाम लिया। परंतु अब जब वो ये देखता है, वो एक प्रकार से उलझन में पड़ जाता है और प्राचीन ये जानता है, इसलिए वो कहता है, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं। अब यहुन्ना उत्तर दे रहा है और मैंने उससे कहा, स्वामी तू ही जानता है। यहुन्ना उन्हें नहीं जान पाया, देखिए सारी जातियां, भाषाएं और राष्ट्र। उसने मुझसे कहा, ये वे, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश से निकलकर आए हैं। दूसरे शब्दों में महाक्लेश, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है उनके मध्य में रहेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अब हम खोलते हैं, मोहर को लेते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि वे थे? अब पहले हम आरंभ करते हैं इसराइल, और तब हम शुद्ध की गई कलीसिया को देखते हैं, न कि दुल्हन को, क्लेशों के द्वारा शुद्ध की गई कलीसिया। देखिए यहाँ बहुत बड़ी संख्या में वास्तविक निष्ठावान हृदय आ रहे हैं, जो कि बड़े क्लेश से निकलकर आ रहे हैं, न कि विशेष कलीसिया। वो चली गई, वो दुल्हन, वो एक कलीसिया है। अब हम यहाँ थोड़ी देर बाद पाते हैं यीशु ने कहा सिंहासन रखा जाएगा और कैसे वे न्याय में खड़े होंगे हर एक। अब हम पाते हैं कि अब ये लोग जीवित परमेश्वर की मोहर से बंद हैं। क्या ये ठीक बात है? ये यहूदी जीवित परमेश्वर की मोहर क्या है? अब मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ। देखिए, क्या आप जानते हैं कि बहुत से विद्वानों को पढ़ने के बाद जिन्होंने ये लिखा है, ये दावा करते हैं कि ये झुंड यहाँ पर है, लहू से धुले वास्तव में दुल्हन है। क्या आपको मालूम है कि बहुत से विद्वान भी दावा करते हैं कि 144,000 दुल्हन है? क्या यहाँ किसी चीज को सही बैठना चाहिए? गलत, इसमें सही, क्योंकि वहाँ अब कुछ गलत है। ध्यान दें, हमारे एडवेंटिस्ट भाई कहते हैं कि परमेश्वर की मोहर सबत के दिन का पालन करना है। आप ये जानते हैं, परंतु मैं इस वचन का एक बिंदु चाहता हूँ दिखाएं कि सबत या सबत के दिन को मानना परमेश्वर की मोहर है। समझे, ये बस किसी ने ये विचार लिया है। परंतु यदि आप इफिसियों 4:30 को पढ़ेंगे, ये कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे कि तुम छुटकारे के दिन के लिए मोहर बंद किए गए हो। जी हाँ श्रीमान, अब बिचवाई का कार्य हो गया और आप आ गए। मसीह अपनों को बचाने के लिए आया। आप अगली बेदारी तक के लिए मोहर बंद नहीं हुए। जब आप एक बार पवित्र आत्मा से मोहर बंद हो गए, ये पूरा किया गया कार्य है कि परमेश्वर ने आपको ग्रहण कर लिया है और अब इससे अलग नहीं हो सकते। आप कहते हैं भाई ये मेरे पास था और मैं दूर चला गया था। नहीं, ये आपके पास था ही नहीं। परमेश्वर ने कहा ये छुटकारे के दिन तक जाता है। अब ओ, आप बस उसके साथ विवाद करते हैं। अब देखिए इसका क्या अर्थ है, आपके छुटकारे के दिन तक। ध्यान दें, जैसे कि वहाँ थे, जैसे कि वे चुन लिए जाने के अनुसार बचे हुए थे, ये यहूदी चुनाव के अनुसार बचे हुए हैं। एलिया की पहली सेवकाई के दिनों में यहूदियों के लिए, जहाँ 7,000 विश्वासी परमेश्वर के हाथ के द्वारा अलग रखे हुए थे, अब ये इस बचे हुए के समय में हैं, अपने समय पर आ रहे हैं कि चुनाव के अनुसार 144,000 हों, कि वो संदेश उस समय में कि संदेश का विश्वास करें और 144,000 हो जाएं। अब आप कहते हैं ओ, अब भाई जरा एक मिनट, मैं इस चुनाव के विषय में नहीं जानता भाई, मैंने इसे वहाँ कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, अब आइए इसे देखें यदि ये ठीक है या नहीं। आइए मती को निकालें और यहाँ आते हैं और ढूंढते हैं यदि हम यहाँ छोटा सा इस पर कहीं कुछ ढूंढ सकें। अब मैं विश्वास करता हूँ मैं ठीक हूँ, मैंने इसे यहाँ लिखा नहीं है, परंतु बस मेरे विचार में आया। आइए 30वें पद के अंत में देखें, जहाँ हम पिछली रात्रि गए थे, 6वीं मोहर का अंतिम 30वें पद पर। अब आइए इसे पढ़ें और अब देखें जहां हम 31वें पद पर आते हैं। समझे, वे मनुष्य के पुत्र को महिमा में आते देखेंगे। अब 31वां पद, वो तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। चुने हुए बाहर आएंगे, ये क्या है? और क्लेश का काल परमेश्वर अपने चुने हुओं को बुलाएगा। और ये उस समय के यहूदी हैं, चुने हुए। इसके लिए बाइबल बोलती है, पौलुस इसके लिए बोलता है, चुन लिए जाने के अनुसार, वो चुन लिए जाने के अनुसार 144,000 जो संदेश का विश्वास करेंगे, अक्षर अक्ष लाखों में से ये वहाँ हैं। फिलिस्तीन में वहाँ लाखों थे एलिया की भविष्यवाणी के दिनों में, और लाखों में से 7,000 बचाए गए। अब चुन लिए जाने के अनुसार जहाँ लाखों यहूदी अपने देश में जमा हो रहे हैं, ये एक राष्ट्र हो गया है, वहाँ पर लाखों होंगे, परंतु केवल 144,000 चुने हुए हैं, एक बार और लिए जाएंगे, वे संदेश को सुनेंगे। यही चीज यहाँ अन्य जाति की कलीसिया में है, वहाँ एक दुल्हन है और वो चुनी हुई है और चुने जाने के अनुसार बुलाया जाएगा। ध्यान दें, ये सब कलीसिया के प्रतीक, सिद्ध चुने हुए विश्वासी। दूसरे विश्वास नहीं करते, आप बस ये बता सकते हैं। आप एक मनुष्य को सत्य बताएं और इसे वचन के द्वारा प्रमाणित होने दें और फिर समर्थन प्राप्त। वो कहता है, मैं इसका विश्वास नहीं करता, आप बस इसके साथ और मूर्ख ना बने। यीशु ने कहा, ना हूँ। कहा, ये ऐसा है जैसे सुअर के सामने मोतियों को डालना, इन्हें बस छोड़ दो, वे पलटेंगे और आपको अपने पैरों तले कुचलेंगे, वे आपका उपहास उड़ाएंगे, बस निकल जाएंगे और उन्हें छोड़ दो। यदि अंधा अंधे की अगुवाई करे, अधिक समय नहीं हुआ मैं एक पुरुष के पास गया, बल्कि वो मेरे पास आया, वो चारों ओर हर तरफ दिव्य चंगाई के विरोध में विवाद करता फिर रहा था। वो आया और उसने कहा, मैं तुम्हारी दिव्य चंगाई का विश्वास नहीं करता। मैंने कहा, मेरी, मैं समझता हूँ कोई भलाई नहीं हुई होगी क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। और वो, मैंने कहा, परंतु परमेश्वर सिद्ध है। उसने कहा, ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने कहा, आपने ये कहने के लिए देर कर दी मित्र। जी हाँ, आपने कर दी, इसके लिए आपने बहुत देर कर दी। आप कुछ वर्षों पहले तर्क वितर्क कर सकते थे, परंतु अब ये दूसरा युग है। देखिए, यहाँ गवाही देने के लिए लाखों हैं। मैंने कहा, आपने अब देर कर दी साथी ये कहने को। उसने कहा, भाई मैं इसका विश्वास नहीं करता, मैं चिंता नहीं करता आप क्या करते हैं। मैंने कहा, निश्चय ही नहीं, आप नहीं कर सकते, समझे। उसने कहा, मुझे अंधा कर दो। कहा, यदि तुम्हारे पास वास्तव में पवित्र आत्मा है जैसे पौलुस के पास, मुझे अंधा कर दो। मैंने कहा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ जबकि आप पहले ही अंधे हैं। मैंने कहा, आपके पिता ने आपको सत्य के लिए अंधा कर दिया है। मैंने कहा, आप पहले ही अंधे हैं। और उसने कहा, मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करता कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितने ही प्रमाण सिद्ध कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा, मैं फिर भी इसका विश्वास नहीं करता। मैंने कहा, निश्चय ही ये अविश्वासियों के लिए नहीं था, ये केवल विश्वासियों के लिए है, यही बात है, समझे। ये क्या था, देखिए, आप जानते हैं, तभी चुनाव से रह गए, बस इसके साथ बिल्कुल मूर्ख ना बने। यीशु ने यही किया, उसने कहा, उन्हें छोड़ दो, यदि अंधा अंधे की अगुवाई करे क्या वे सारे गढ़े में न गिरेंगे। परंतु जब वो छोटी वेश्या के पास आता है, आग लग जाती है। ये क्या था, ये चुना हुआ बीज वहाँ रखा था, देखिए, जिसने इसे अभी देखा। जब ये पतरस के पास आया तो वहाँ एक चुना हुआ बीज वहाँ रखा था, देखिए, और उन्होंने इसे देखा, और सब जो पिता ने दिया है, भूतकाल मुझे दिया है, वे आएंगे, वे मेरे पास आएंगे। ओ प्रभु, मुझे ये अच्छा लगता है। जी हाँ श्रीमान, ध्यान दें, विश्वासी इसका विश्वास करता है, अविश्वासी इसका विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए अब यदि कोई सर्प वंश के विषय में विवाद करना चाहता है और चीजें, और आप उन्हें दिखाने का यत्न करते हैं, वे इसे नहीं सुनेंगे, बस हट जाएं, बस उन्हें छोड़ दें। देखिए, परमेश्वर तर्क वितर्क नहीं करता, ना ही उसके बालक। ध्यान दें, परमेश्वर के 144,000 चुने हुए यहूदी इस पशु के सामने नहीं झुकेंगे, उसके नामधारी वाद के या मूरत के सामने या कोई भी चीज। यद्यपि उनका राष्ट्र उनके साथ उस समय वाचा में है, इसराइल एक वाचा में है, परंतु यहाँ 144,000 हैं जो ये नहीं करने जा रहे हैं, ये चुने हुए हैं। वही चीज ठीक यहाँ अब अन्य जाति की कलीसिया में है, एक चुना हुआ झुंड है। आप उन्हें इस प्रकार की चीजों में नहीं घसीट सकते, वे इसका विश्वास नहीं करेंगे। नहीं श्रीमान, जब उन पर एक बार ज्योति चमक गई तो ये वहीं तय हो गया। वे देखते हैं इसे घटित होते हुए देखते हैं, और इसे इस प्रकार प्रमाणित और सिद्ध होते हुए देखते हैं, और वे यहाँ बाइबल में देखते हैं कि वचन जा रहा है। भाई, आप बस जितना हो सकता है उनके साथ मूर्ख बनने से अलग हो जाएं, क्योंकि वे ये विश्वास करते हैं। बस कुल मिलाकर यही है। यद्यपि वे इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, परंतु वे जानते हैं कि ये उनके पास है। इसलिए जैसे मैं कहता हूँ, वहाँ बहुत सी बातें हैं, मैं व्याख्या नहीं कर सकता, परंतु मैं ये जानता हूँ, ये जो भी है वास्तविक है। ओह ठीक है, ये समय छठवीं और सातवीं मोहर के बीच का था कि वो इन लोगों को बुलाता है। यीशु मसीह के द्वारा मत्ती 24 अध्याय 31वें पद में बोला गया, जिसे हमने अभी पढ़ा। देखिए, यहाँ तुरहियाँ, दो गवाह। जब तुरही बजी, वो यहूदियों पर अनुग्रह के लिए दो गवाहों की तुरही। एक तुरही बजी, आप ध्यान दें, एक तुरही बजी, उसने कहा, और तुरही की आवाज। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ 31वें पर, और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ, एक को नहीं, देखिए वहाँ दो हैं, अपने दूतों को भेजेगा। ये क्या है? जब परमेश्वर बोलने के लिए तैयार हुआ तो वो तुरही का शब्द, ये सदा उसकी आवाज है, ये युद्ध कहलाया। देखिए, परमेश्वर बोला, ये दूत तुरही के शब्द के साथ आएंगे। और क्या आपने ध्यान दिया, अंतिम दूत का संदेश तुरही का शब्द। पहले दूत का संदेश एक तुरही बजी, दूसरे दूत का एक तुरही बजी जब उसने इसे भेजा। ध्यान दे, परंतु जब मोहरों की घोषणा हुई, वे सारे एक महान दिव्य चीज में थे कि लोगों के एक झुंड को बुलाए। वहाँ एक तुरही का शब्द हुआ और सात मोहरें टूटी थीं। ध्यान दें, अपने चुने हुए यहूदियों को आकाश के चारों छोर से जमा किया। उसने, जैसा हमने देखा, छह मोहरों का उल्लेख किया, परंतु सातवीं मोहर का नहीं। उसने यहाँ सातवीं मोहर के विषय में कभी कुछ नहीं कहा, कहीं नहीं। सीधे 32वें पद को देखें, चुने हुए यहूदियों की बुलाहट के समय के दृष्टांतों को निकालें। अब यहाँ ध्यान दें, देखिए, और वो दूतों को तुरही के साथ भेजेगा और चुने हुओं को आकाश के चारों कोनों से एकत्र करेगा। अब वो आरंभ करता है, देखिए, वो यहाँ सातवीं मोहर के विषय में कुछ नहीं कहता, समझे? वो छठवीं मोहर के लिए बोला, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठवीं। परंतु ध्यान दें, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। वो अंतिम, वो प्रश्न जो उन्होंने उससे पूछा, और संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब तुम इन यहूदियों को देखते हो, जब तुम ये दूसरी बातें घटित होते देखते हो, अब जब तुम इन यहूदियों को देखते हो, यहूदियों से बात करते हुए, अब ध्यान दें, किस झुंड से वो बातें कर रहा है? अन्य जाति, यहूदियों से, समझे? अब उसने कहा, मेरे नाम के कारण सारे राष्ट्र के लोग तुमसे घृणा करेंगे और इस प्रकार से। अब जब उसने कहा, आप देखिए, ये यहूदी वहाँ अपनी कोपले निकाल रहे हैं, जब वो इसराइल वापस आने लगा, अपने देश में आने लगा, जब वे वहाँ पहुँचे, कलीसिया उठाए जाने के लिए तैयार है। अब केवल 3.5 वर्ष बचे हैं, जब तक कि पुराने संसार का अंत हो और वो गड़बड़ी में चला जाता है और सहस्र शताब्दी अंदर आती है इस नई पृथ्वी पर। कहा, द्वार ही पर है। अब पृथ्वी पर 1000 वर्ष परमेश्वर के साथ एक दिन है, और 3.5 वर्ष तो ये कितने पर जाएगा? परमेश्वर के समय में इतने सेकंड। यही कारण है कि उसने कहा, ये द्वार पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा, इन लोगों के साथ समाप्त हो जाना, जब तक कि ये सारी बातें, क्या इसके साथ क्या नष्ट न होगा? उन्होंने यहूदियों को सारे समय इस पृथ्वी पर से मारकर खत्म करने का यत्न किया, वे इसे कभी भी करने के योग्य न होंगे। परंतु ध्यान दें, वो पीढ़ी जिसने यहूदियों को वापस फिलिस्तीन में आते देखा, वो पीढ़ी इन चीजों को घटित होते देखेगी, और जरा से अंतिम 2 वर्षों में वो पूरी रीति से एक राष्ट्र हो गए, अपनी मुद्रा और जो भी, वो वहाँ पर है। अब मित्रों, हम लोग कहाँ हैं? मोहरें और हर चीज खुल रही हैं। अब हम इसे इस बीच में ले रहे हैं, ये यहाँ है, देखिए हम कहाँ बैठे हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए। मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है, मैं जानता हूँ मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ, परंतु हो सकता है मैं व्याख्या ना कर पाऊँ इसकी व्याख्या की आपके लिए अर्थ हो, परंतु मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर शब्दों को लेकर जो मिले जुले हैं और उन्हें सही सही बांट देता है, देखिए, और आप जान लें कि ये क्या है, क्योंकि हम द्वार पर हैं, हम यहाँ समय पर हैं।
See right away now, it turns
अब ध्यान दें, देखिए सीधे सीधे अब वो इन यहूदियों की ओर फिरता है और अंतिम समय में वो कहता है कि क्या घटित होने जा रहा है। हम अब ये भी जानते हैं, हम जानते हैं, हमें अच्छी तरह जानते हैं कि 2500 वर्षों से गोत्र बिखरे हुए हैं। उनके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि चारों दिशा में बिखरेंगे। क्या आपको ये मालूम है? हम ये जानते हैं, निसंदेह हमें वापस नहीं जाना है और इसे लें, क्योंकि मेरे पास वास्तव में कुछ विशेष है। मैं चाहता हूँ कि आप देखें, इसके पहले आप भी थक जाएं और मैं भी निढाल हो जाऊं। ध्यान दें, हम जानते हैं यहाँ तक कि हर गोत्र, जो कि गोत्र का क्रम है, या आप इसे जो भी कहना चाहें, या भौमिक या गोत्र स्थितियां अब एक साथ नहीं है, वे हर जगह बिखरे हुए हैं। यहूदी लोग यरूशलेम में जमा हो रहे हैं, क्या नहीं? वे अपना गोत्र तक नहीं जानते, उनके पास अब गोत्र का झंडा नहीं है या कुछ, इसे छोड़ कि वे यहूदी हैं, वे कुछ नहीं जानते। इस प्रकार संसार में होने के लिए उनके लिए भविष्यवाणी थी, अब उनकी पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, वे नहीं जानते। आप कहते हैं आप कौन से गोत्र से हैं? मुझे नहीं मालूम कौन सा गोत्र, मैं नहीं जानता। एक बिन्यामीन से, एक इससे और एक उससे, वे नहीं जानते कि वे कहाँ से हैं। युद्धों में होते हुए उनकी पुस्तकें नष्ट हो गईं और 2500 वर्षों से वे केवल ये जानते हैं कि वे यहूदी हैं, बस इसलिए वे जानते हैं कि वे अपने देश में वापस आ गए। वे अब भी ध्यान दें, यद्यपि वे नहीं जानते कि उनका गोत्र क्या है, परंतु परमेश्वर जानता है। बस मुझे ये अच्छा लगता है, उसने जैसा कि कहा वहाँ तुम्हारे सर के सारे बाल गिने हुए हैं। हाँ, ध्यान दें, वो कुछ नहीं खोता। मैं इसे अंतिम दिन फिर से उठा खड़ा करूँगा। यद्यपि वे अपने गोत्रों के झंडे खो चुके हैं और कौन सा कौन है, और चाहे वे ये या वो, वे नहीं जानते वे बिन्यामीन से हैं, वे रूबेन से हैं, या इसाकार से, या वे कहाँ से हैं। परंतु जो भी है, परमेश्वर उन्हें यहाँ बुलाता है। अब प्रकाशित वाक्य 7 में ध्यान दें, हम ये पढ़ते हैं, हर गोत्र से 12,000 सब में से चुने हुए, हर गोत्र से वहाँ 12,000 चुने हुए हैं, ये चुने हुए और यही ठीक क्रम में रखे हैं। ओ प्रभु, वे कौन हैं? वे गोत्र क्रम में हैं, वे अभी अब नहीं हैं, परंतु वे होंगे, वे गोत्र क्रम में हैं। गोत्र क्रम में क्या होगा? ना कि सामान्य यहूदी, नहीं, परंतु वो जो चुना हुआ है, 144,000 गोत्र क्रम में रखे जाएंगे। ओ प्रभु, मैं आपको कैसे दर्शाऊंगा? हम इसमें नहीं जाएंगे, परंतु ठीक वैसे जो कलीसिया को होना है, ओ सही क्रम में। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें और मेरे साथ पढ़ें कुछ मिनटों के लिए। अब यहाँ पर कुछ है, हो सकता है आपने कभी ध्यान ना दिया हो इन गोत्रों की बुलाहट में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रकाशित वाक्य 7 मेरे साथ पढ़ें और उन गोत्रों पर ध्यान दें। प्रकाशित वाक्य 7 में दान और अप्रेम नहीं है, उनके साथ नहीं गिने गए। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? यूसुफ और लेवी को इनके स्थान में रखा है। क्या आपने ये ध्यान दिया? दान और अप्रेम वहाँ नहीं है, नहीं श्रीमान, परंतु यूसुफ और लेवी दान और अप्रेम के स्थान में रखे गए। क्यों? वे सदा स्मरण रखने वाला परमेश्वर अपने वचन की हर प्रतिज्ञा को स्मरण रखता है। ओ, मैं इस पर प्रचार करना चाहता हूँ, समझे? परमेश्वर कुछ नहीं भूलता, यद्यपि ऐसा लगता है। जैसा उसने मूसा को बताया, इसराइल वहाँ 400 वर्षों से था, उन्हें उस समय जाना ही था। उसने अब्राहम को बताया और उसका वंश एक अनजाने देश में 400 वर्ष के लिए परदेशी बनकर रहेगा, तब वो उन्हें अपनी सामर्थी भुजा से बाहर ले आएगा। परंतु तब उसने मूसा से कहा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया है और मैं उस भलाई के लिए जो मैंने कही थी करने के लिए नीचे उतर आया हूँ। परमेश्वर भूलता नहीं है, वो अपने श्राप नहीं भूलता, न ही वो अपनी आशीष भूलता है, परंतु हर प्रतिज्ञा जो उसने की वो उसके संग बना रहता है। यहाँ इसी कारण से वो खोए हुए थे। अब यदि आप ध्यान दें, आप पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप अब मेरे साथ पढ़ें। व्यवस्था विवरण 29वां पद वहाँ था, 29वां अध्याय। बल्कि एक कारण है कि ये गोत्र वहाँ पर नहीं है। हर चीज का एक कारण होता है। व्यवस्था विवरण, हम व्यवस्था विवरण का 29वां अध्याय लेना चाहते हैं। अब परमेश्वर हमारी उसी प्रकार सहायता करे ताकि अब हम इसे समझ सकें। अब हम व्यवस्था विवरण 29 को आरंभ करना चाहते हैं 16वें पद से। अब सुनिए, मूसा बोल रहा है, तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहा करते थे और जब मार्ग में जातियों के बीचों बीच आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ, पत्थर, चांदी, सोने की कैसी मूर्तें देखी। हर कोई थोड़ा कुछ चिल्लाया या कुछ, एक छोटी मूर्त संत सिसिरिया की आप जानते हैं, कुछ इस प्रकार से देखिए, कहीं इसलिए सुनिए, इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हों जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। और फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो। और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन को सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और ये सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। देखिए, लोग कहते हैं ओ वो अपने आप को धन्य कहता है। अब जानते हैं, एक छोटी सी सली बना ली या कुछ जो वे अब करते हैं, आप देखिए वही चीज। और आप ये देखिए, ये मूर्ति पूजकों की विशेषता है। देखिए वो मूर्ति पूजक, वो अपने आप को अपने हृदय में धन्य कहे, उसकी अपनी कल्पना में, अपने ही मन में मदपान से प्यास बुझा लूं, थोड़ी सी पी लूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक आप कलीसिया में जाते हैं आप ठीक हैं। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा। और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं, इसमें से एक भी वचन ना निकालें या इसमें एक मिलाएं। देखिए, उस पर आ पड़ेंगे और प्रभु उसका नाम आकाश के नीचे से मिटा डालेगा। यही जबकि वो यहाँ पृथ्वी पर था, देखिए आकाश के नीचे। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इसराइल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा। इसलिए यदि कोई मनुष्य मूर्ति की सेवा करेगा या अपने ऊपर मूरत को रखे या अपने आप को मन की कल्पना में धन्य समझे और मूर्तों की सेवा करे, परमेश्वर ने कहा पुरुष, स्त्री, परिवार या एक गोत्र, उसका नाम पूरी रीति से लोगों के बीच में से काटा जाएगा। अब क्या ये ठीक बात है? कितना सच। कलीसिया में वर्षों पहले मूर्ति पूजा ने यही चीज की और आज करती है। और मैंने ध्यान दिया, देखें कैसे मसीह विरोधी ने यत्न किया, विपरीत अभियान चलाए। कितने ये जानते हैं कि शैतान प्रतीक और नमूनों में परमेश्वर के संतों के पीछे है? क्या है पाप? क्या है? क्या सही चीज को दूषित किया जाना? झूठ क्या है? सत्य का गलत चित्रण करना। व्यभिचार क्या है? सही व्यवहार, वैध व्यवहार गलत किया गया, समझे? अब इसे करने के यत्न में एक नाम मिटा दिया गया। क्या आपने ध्यान दिया, कलीसियाई युग में वही पशु जिसने मृत लोगों के चित्रों की सेवा की और आदि आदि, प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिटाने का यत्न किया और उपनाम दे दिए, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वही चीज इसके पीछे इसी श्राप के साथ, जैसे ये दान और अप्रेम ने बस यही किया, इसराइल में एक ढोंगी राजा की अधीनता में एक धोखेबाज यरोबाम। अब ध्यान दे, पहले राजा के 12वें अध्याय में मैं जानता हूँ हम ये मेरे लिए ये एक भूमिका बनाता है जिस पर हम निर्भर कर सकते हैं। हम क्या देखते हैं? पहला राजा मैं 12वें अध्याय में जाना चाहता हूँ, 25वें से 30वां पद। तब यरोबाम एप्रेम के पहाड़ी देश के शेकेम नगर को दृढ़ करके रहने लगा, फिर वहाँ से निकलकर पनियोल को भी दृढ़ किया। और अब यरोबाम ने अपने मन में कहा, देखिए उसके हृदय की कल्पना, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। अब देखिए वो डर रहा था क्योंकि लोग जा सकते हैं। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन उनके स्वामी यहूदा के राजा रहुब्याम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहुब्याम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इसराइलियों अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आए हैं। उसने एक को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और ये बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। देखिए एप्रेम बेतेल में और दान और उन्होंने मूर्तियां स्थापित की और ये उसकी आराधना करने को वहां गए और यहां हम लोग हैं वहां नीचे सहस्र शताब्दी युग लगभग और परमेश्वर को अब भी वो पाप याद है, उन्हें वहां पर गिना भी नहीं गया। हे महिमा हो, जितनी निश्चितता के साथ वो हर अच्छी प्रतिज्ञा को याद रखता है वो हर बुरी को भी याद रखता है जब। मित्रों यही कारण है कि मैं विश्वास करता हूँ मैंने सदा वचन के साथ बने रहने का यत्न किया है, कोई मतलब नहीं कितना भी विचित्र लगे। देखिए अब उन्होंने इस विषय में नहीं सोचा होगा, उन्होंने सोचा भाई ये चल जाएगा ठीक है, परंतु वे यहाँ इस सहस्र शताब्दी के युग में हैं, स्थापित हो रहे हैं, जबकि उनके नाम और गोत्र यहाँ से मिटा दिए गए क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा की जिसे परमेश्वर ने श्रापित किया। क्या उसने नहीं कहा उसने निकोलाइयों से घृणा की और वो इजाबेल उससे अलग रहो? क्या उसने नहीं कहा वो इजाबेल की पुत्रियों को मृत्यु से मार डालेगा जो कि उसकी उपस्थिति से अनंत अलगाव है? इसमें बिल्कुल भी विश्वास न करें, इससे अलग रहें, इसलिए परमेश्वर स्मरण रखता है। ध्यान दें, परंतु क्या आपने वहाँ ध्यान दिया? इसे मिटा दिया जाना था। क्यों? आकाश के नीचे वहाँ कोई सीधा बलिदान नहीं था जो कि उसे पवित्र आत्मा दे सकता था कि उसे इन बातों को दिखाता, परंतु जो भी है उसने ये किया अपने ही स्वार्थी मन में। परंतु हिजकेल अपने दर्शन में सहस्र शताब्दी में वो उन्हें फिर से सिद्ध क्रम में देखता है। हिजकेल यदि आप ये पढ़ना चाहते हैं इसे लिख लें और आप इसे पढ़ सकते हैं समय बचाने के लिए, हिजकेल 48:1-7, 23-29 तक भी पढ़ें। हिजकेल ने हर गोत्र को अपने सही क्रम में देखा ठीक है, और प्रकाशित वाक्य 14 में भी यूहन्ना ने उन्हें फिर से गोत्र क्रम में देखा, ये ठीक बात है, हर गोत्र उसके स्थान पर। क्या हुआ? अब स्मरण रखें, उसने कहा आकाश के नीचे कि उसका नाम गोत्रों में से हटाया जाएगा, जब तक कि वो आकाश के नीचे है वहाँ नहीं होगा, और ये 144,000 वहाँ गोत्रों के भाग में हैं, अभी ठीक है। परंतु आप देखिए वे अंधे किए गए, उनके पास केवल बैलों और बकरियों के बलिदान थे, समझे? अब ध्यान दें, उसने उन्हें आकाश के नीचे से मिटा दिया, परंतु अन्य जाति पवित्र आत्मा के दिनों में इसके विपरीत आपके नाम पूरी रीति से जीवन की पुस्तक से हटा दिए गए थे और कभी भी क्षमा नहीं किए जा सके इस संसार में या आने वाले संसार में, ये ठीक बात है। इसलिए यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इसराइल बकरियों भेड़ों की अधीनता में उनके पास एक स्थान है, जब तक कि वे इस पृथ्वी पर हैं उनके गोत्र छोड़ दिए गए थे, वे कभी भी मिलाए नहीं जा सके। अब सारे जब उसने उन्हें बुलाया वहाँ 144,000 नहीं थे, ये ठीक बात है, यहाँ तक कि वे उनमें गिने भी नहीं गए, और यूसुफ और लेवी दान और एप्रेम के स्थान पर रखे गए। अब आप इसे देख सकते हैं, ये ठीक वहाँ पर है आपके सामने, देखिए, और यहाँ परमेश्वर की प्रतिज्ञा है यहाँ पीछे सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष इसके पहले। अब क्या हुआ? वे भयानक कष्टों के समय में शुद्ध किए गए थे। अब यदि परमेश्वर उस कुंवारी को शुद्ध करने जा रहा है जो कि अच्छी स्त्री थी, परंतु वो अपने चिरागदान में तेल लेने के लिए असफल रही और वो उसे कष्टों में से होकर शुद्ध करने जा रहा है। उसने उन गोत्रों को ठीक वहाँ रखा उन्हीं बातों के लिए और क्लेश के काल में उन्हें शुद्ध किया, क्योंकि ये शुद्ध होना है, ये न्याय है। परंतु आप देखिए वे इसके बाद, और ये यहाँ देखिए, यहाँ 144,000 इसराइल के शुद्धिकरण के बाद आते हैं और यहाँ मूर्ख कुंवारी भी आती हैं, शुद्ध होकर आती हैं और श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। समझे कितना सिद्ध, ये कितना सुंदर है। जैसे याकूब कष्ट के समय में, देखिए वे याकूब कष्ट के समय में उसने गलत किया था, परंतु वो शुद्ध होने के समय से होकर निकला, क्योंकि उसने अपने भाई के साथ गलत किया था, एसाव के साथ। समझे, उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए धोखा दिया था, परंतु वो शुद्धिकरण में से होकर निकला इसके पहले कि उसका नाम याकूब से इसराइल में बदलता, जो कि परमेश्वर की व्यवस्था का प्रतीक है, आज का प्रतीक। अब हम आठवां पद निकालेंगे, या पहला पद, मेरा अर्थ आठवें अध्याय का प्रकाशित वाक्य 8:1 का। मैं जानता हूँ आप थक गए हैं, परंतु आप कुछ मिनटों के लिए सुनने का यत्न करें अब, और स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता करे, मेरी ये प्रार्थना है। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि ये सातवीं मोहर समय का अंत है, सारी चीजों का। ये ठीक बात है, ये बातें सात मोहर की पुस्तक में लिखी हुई हैं, मोहर बंद है, संसार के रचने से पहले छुटकारे की योजना, इसका हर बिंदु समाप्त हो गया, ये अंत है, ये संसार के संघर्ष का अंत है, ये प्रकृति के संघर्ष का अंत है, ये हर चीज का अंत है, इसमें त्रोइयों का अंत है, ये कटोरों का अंत है, ये पृथ्वी का अंत है, ये यहाँ तक कि समय का अंत है, समय समाप्त हो गया। बाइबल ऐसा कहती है, मती 7वां अध्याय, मेरा अर्थ प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, 10वां अध्याय और 1-7 पद, समय समाप्त हो गया। स्वर्गदूत ने कहा समय और नहीं रहेगा, जब वो इस महान बात के घटित होने के दिनों में हर चीज समाप्त हो गई, इस समय अंत, इस सातवीं मोहर के अंत में। ध्यान दें, ये कलीसिया काल का अंत है, ये सातवीं मोहर का अंत है, ये तुरहियों का अंत है, ये कटोरों का अंत है, और यहाँ तक कि सहस्र शताब्दी में प्रवेश का अंत, ये सातवीं मोहर पर है। ये हवा में रॉकेट दागने के समान है, और उस रॉकेट का यहाँ धमाका होता है और ये चला जाता है, और फिर से धमाका होता है, इसमें से 5 सितारे निकलते हैं, और उनमें से 1 सितारे में धमाका होता है, और उससे 5 सितारे निकलते हैं, और फिर उनमें से 1 सितारे में धमाका होता है, और इससे 5 सितारे निकलते हैं। देखिए, धूमिल हो जाता है, यही जो सातवीं मोहर है। ये बस संसार के लिए समय का अंत है, ये इसके लिए समय का अंत है, ये उसके लिए समय का अंत है, ये इसके लिए समय का अंत है, ये समय का अंत है, हर चीज सातवीं मोहर पर समाप्त हो जाती है। अब वो इसे कैसे करने जा रहा है, यही जो हम नहीं जानते, क्या ये नहीं है, हम नहीं जानते। ये यहाँ तक कि ये इन सारी बातों के लिए समय है, और सहस्र शताब्दी में प्रवेश करना, ध्यान दें, इस मोहर का टूटना इतना महान था कि इसके द्वारा स्वर्ग शांत हो गया, शांति में आधी घड़ी के लिए। अब क्या ये महान बात है, ये क्या है, स्वर्ग शांत थे आधी घड़ी के लिए, कोई भी हलचल नहीं थी। अब एक आधा घंटा लंबा नहीं है यदि आपका समय अच्छा है, परंतु मृत्यु और जीवन के बीच का भेद ये सहस्र शताब्दी सा प्रतीत होता है। ये इतना महान था, यीशु ने इसका कभी भी उल्लेख नहीं किया, उनमें से बाकी किसी ने भी नहीं, यहाँ तक कि यूहन्ना इसे लिख भी नहीं सका, नहीं, उसे यहाँ लिखने के लिए रोका गया। देखिए, वहाँ बस एक, बस उसने इसे नहीं लिखा, परंतु ये शांति है। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने खड़े थे, वहाँ उनकी वीणा से वीणा वादन, उन्होंने अपनी वीणाओं को बजाना बंद कर दिया, स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने अपना गाना गाना बंद कर दिया। सोचिए, वे पवित्र करूब और सराफीम जो यशाय ने मंदिर में देखे, छह जोड़ियों के साथ या तीन जोड़ी पंखों के साथ, तीन, दो उसके मुख पर और पैरों के ऊपर उड़ रहे थे, और दिन और रात वे परमेश्वर के सामने पवित्र 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 गा रहे हैं, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और यहाँ तक कि जब वे भीतर आए या मंदिर के अंदर आए तो मंदिर के खम्भे उनकी उपस्थिति से हिल गए, और ये पवित्र सराफीम शांत हो गए। स्वर्गदूतों ने गाना बंद कर दिया, ओ परमेश्वर की उपस्थिति में उड़ रहे हैं, गा रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, वे शांत हो गए। कोई स्वर्गदूत नहीं गा रहा है, कोई स्तुति नहीं, कोई वेदी की सेवा नहीं, नहीं कुछ नहीं, वहाँ शांति थी, स्वर्ग में बिल्कुल सन्नाटा आधे घंटे का। स्वर्ग की सारी सेना इस आधे घंटे में शांत थी जब ये सातवीं मोहर का भेद छुटकारे की पुस्तक में तोड़कर खोला गया। इस पर सोचें, परंतु ये तोड़ी गई, मेमना इसे तोड़ता है। आप जानते हैं क्या, वे इससे विस्मित थे। मैं विश्वास करता हूँ उन्हें नहीं मालूम था कि ये वहाँ था, वे बस रुक गए, क्यों, ये क्या है, अब हम में से कोई नहीं जानता। परंतु मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे इसके अपने प्रकाशन में, और अब मेरा झुकाव धर्मांध होने का नहीं यदि मैं इससे अज्ञान हूँ। देखिए, मैं ऐसा कुछ चालाक दृष्टि जैसी काम चलाऊ और काल्पनिक चीजें देने नहीं जा रहा हूँ। मैंने कुछ बातें कही हैं, कुछ लोगों के लिए एक प्रकार से विचित्र हो सकती है, परंतु जब परमेश्वर आसपास आता है इसके पीछे और इसका समर्थन करता है और कहता है कि ये सत्य है, तो ये परमेश्वर का वचन है, समझे, ये विचित्र प्रतीत हो सकता है इस प्रकार से, समझे। और जितने निश्चित रूप से मैं आज रात्रि इस प्रचार मंच पर खड़ा हूँ, मेरे पास प्रकाशन था जिसने प्रकट किया, ये तीन सतीय ढंग में है जो मैं आपसे बोलूंगा परमेश्वर की सहायता से, इसके एक सतह का, और तब आप आइए इस पर पहले चलें। यहाँ वो प्रकाशन आरंभ होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या है, क्या हुआ, क्या ये वे सात गर्जने जो उसने गर्जने सुनी और लिखने से रोका गया, यही वो भेद है जो उन निरंतर गर्जनों के पीछे है जो बाहर आई। अब क्यों, आइए हम इसे सिद्ध करें, क्यों, ये भेद है जो कोई नहीं जानता। इस विषय में यूहन्ना को इस विषय में लिखने को मना कर दिया, यहाँ तक कि इस विषय में प्रतीक भी, क्यों, ये क्योंकि वहाँ हलचल नहीं थी, स्वर्ग में हलचल, इससे भेद प्रकट हो सकता है। क्या अब आप इसे देखते हैं, यदि ये इतना महान है तो इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए था क्योंकि इसे घटित होना था, परंतु जब सात गर्जने, अब ध्यान दें, जब सात स्वर्गदूत अपनी तुरैया बजाने के लिए आते हैं, वहाँ एक गर्जन थी, जब इसराइल जमा हुआ था तो वहाँ एक तुरही थी, जब समय और ना होगा, अंतिम तुरही, एक गर्जन, परंतु यहाँ सीधे सीधे सात गर्जने हैं, ठीक एक पंक्ति में, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ये सिद्ध अंक, सात गर्जनों ने एक पंक्ति में आवाज की, ना कि ठीक ठीक एक दो तीन चार पाँच छह सात सीधे सीधे हो रहे हैं। तब स्वर्ग इसे लिख नहीं सके, स्वर्गों में इस विषय में पता नहीं लगा, कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, ये विश्राम का समय था, ये इतना महान था, यहाँ तक कि ये स्वर्गदूतों से भी छिपा लिया गया था। अब क्यों, यदि शैतान इसको पकड़ लेगा, वो एक बड़ी हानि पहुँचा सकता है, केवल एक बात जो वो नहीं जानता, अब वो किसी भी चीज का चाहे अनुवाद कर सकता है और किसी भी वरदान की नकल। मैं आशा करता हूँ कि आप सीख रहे हैं, परंतु वो इसे नहीं जान सकता, ये वचन में लिखा तक नहीं है, ये एक पूर्ण भेद है, वो स्वर्गदूत हर चीज बंद है, यदि वे इसे जरा भी हलचल करते ये कुछ दे सकता है, इसलिए वे बिल्कुल शांत हैं, वीणा बजाना बंद कर दिया, हर चीज रुक गई।
7, God's perfect number, 7,
7 परमेश्वर का सिद्ध अंक है, 7, ठीक सीधे पंक्ति में 7 गर्जने निरंतरता में एक साथ गर्जी, जैसे उन्होंने किसी चीज का अक्षर विन्यास किया हो। ध्यान दें, उस समय यहुन्ना ने लिखना आरंभ किया, उसने कहा इसे मत लिख। यीशु ने इसके लिए कभी नहीं बोला, यहुन्ना इसे ना लिख सका। स्वर्गदूत इस विषय में कुछ नहीं जानते। ये क्या है? ये वो चीज है जो यीशु ने कहा, यहाँ तक कि स्वर्ग के दूत भी इस विषय में नहीं जानते, इस विषय में कुछ भी नहीं। समझे? उसे स्वयं को ये नहीं मालूम, कहा केवल परमेश्वर ये जानता है। परंतु उसने हमें बताया, जब हम इन चिन्हों को आते हुए देखें, अब आप कहीं पहुंच रहे हैं? ध्यान दें, हमने चिन्हों को आते हुए देखना आरंभ कर दिया है, समझे? यदि शैतान इसे पकड़ सके, यदि आप चाहते हैं कि कुछ घटित हो, अब आपको इसके लिए मेरे शब्द को लेना पड़ेगा। यदि मैं कुछ करने की योजना बना रहा हूँ, तो इस विषय में किसी को बताने से मैं अच्छा जानता हूँ, न कि वो व्यक्ति इसे बताएगा, परंतु शैतान इसे सुन लेगा, समझे? वो मेरे हृदय के अंदर नहीं आ सकता जब तक कि परमेश्वर ने इसे पवित्र आत्मा से बंद कर रखा है। इसलिए ये मेरे और परमेश्वर के बीच में है, समझे? वो इस विषय में कुछ नहीं जानता जब तक कि आप ना बोले, तब वो इसे सुनता है। और मैंने परखा है, मैं लोगों को बताता हूँ, मैं वो चीजें करूँगा। और ध्यान, शैतान हर मार्ग को काट देता है जो वो कर सकता है कि वो वहाँ पहुँचे कि मुझे इससे हटा दे। परंतु यदि मुझे परमेश्वर से प्रकाशन मिलता है और इस विषय में कुछ नहीं कहता, तो ये भिन्न है। याद रखें, शैतान नकल मारने की कोशिश करेगा, वो हर चीज की नकल करने की कोशिश करेगा जो कलीसिया करेगी। उसने ये करने की कोशिश की है, हमने ये मसीह विरोधी में होते हुए देखा है। परंतु ये एक चीज है जिसकी वो नकल नहीं कर सकता, इसकी कोई नकल नहीं होगी, क्योंकि वो ये नहीं जानता, उसके पास कोई विधि नहीं है कि इसे जाने। ये तीसरा खिंचाव है, वो इसके विषय में कुछ नहीं जानता, समझे? वो इसे नहीं समझता, परंतु इसके नीचे इसका भेद है। ऊंचे पर परमेश्वर की महिमा हो, मैं कभी भी वैसा नहीं सोच सकता था अपने सारे जीवन भर, जब मैंने देखा। अब मैं नहीं जानता क्या, मैं अगला कदम जानता हूँ, परंतु मैं नहीं जानता क्या, कैसे इसका अनुवाद करूँ। ये अधिक लंबा नहीं होगा, मैंने यहाँ लिख रखा है जब ये घटित हुआ। यदि आप यहाँ देख सकें, रुक जाओ, अब यहाँ से इसके आगे ना जाओ। मैं हर धर्मी नहीं होना चाहता, मैं ठीक सच्चाई बता रहा हूँ। परंतु आपको छोटा जूता याद है जिसकी मैंने सदा व्याख्या करने की कोशिश की, कैसे वो प्राण आगे रखा है, उस अमुक अमुक का और भीतरी विवेक और सब प्रकार की चीजें जिसका इसने इसके बाद केवल नकल मारने वालों का एक बड़ा झुंड बनाना आरंभ कर दिया। कैसे उन्हें हाथ पकड़ना था और लोगों को पकड़ना और कंपन लेना, उनके हरेक के हाथों में कंपन थे। परंतु आप स्मरण रखें, जब वो मुझे वहाँ ऊपर ले गया और कहा ये तीसरा खिंचाव है और इसे कोई नहीं जान पाएगा। आपको ये याद है, दर्शन कभी भी असफल नहीं होते, वे पूरी रीति से सत्य है। अब ध्यान दें, स्मरण रहे उस झुंड का दर्शन। चार्ली, मैं तुम यहाँ हो, कुछ चल रहा है। मैंने इस सप्ताह आपको बताया कि आप ये आपके चारों ओर रहा है, परंतु मुझे आश्चर्य है यदि आपने इसका ध्यान किया है। स्मरण करें स्वर्गदूतों के झुंड का दर्शन, जब मैं यहाँ से एरिजोना के लिए निकला। आपको याद है श्रीमानो, क्या यही समय है? आपको याद है? ध्यान दें, वहाँ केवल एक बड़ा गर्जन का धमाका था और 7 स्वर्गदूत प्रकट हुए। ये ठीक है, गर्जन का एक धमाका, 7 स्वर्गदूत प्रकट हुए। और मैंने मेमने को देखा जब उसने पहली मोहर खोली थी, और मैंने एक गर्जन का सा शब्द सुना। चारों प्राणियों में से एक ने कहा, आ और देख। ध्यान दें, एक गर्जन, 7 संदेशवाहक जो कि मोहर बंद थे और अंत के दिन तक प्रकट नहीं हो सकते थे इस युग में। देखिए मेरा क्या अर्थ है। अब क्या आपने इस सप्ताह में भेद भरे भाग पर ध्यान दिया? वही जो ये है, यही जो रहा है, ये कोई मनुष्य नहीं है, एक मनुष्य, ये प्रभु के स्वर्ग दूत थे। ध्यान दें, वहाँ तीन की गवाहियाँ हैं यहाँ बैठे हुए हैं। एक सप्ताह पहले या थोड़ा सप्ताह से अधिक मैं वहाँ पीछे पहाड़ों में था, मेक्सिको के पास, दो भाइयों के साथ जो यहाँ बैठे हैं। गोखरू या बालू भित्ती अपनी पैंट के पैंचे से छुड़ा रहा था और एक धमाका हुआ जो कि लगभग ऐसा लगा कि पहाड़ों को हिला दिया। अब ये ठीक बात है, मैंने अपने भाइयों को कभी नहीं बताया, परंतु उन्होंने अंतर को देख लिया था और उसने मुझसे कहा, अब तैयार हो जाओ, पूर्व में जाओ। यहाँ उस दर्शन का अनुवाद है, समझे? अब आपको बता दूं, भाई सॉथमैन को शिकार नहीं मिला जिसके पीछे वे गए थे। हम उनके लिए कोशिश कर रहे थे और उसने कहा, अब आज रात्रि तुम्हारे लिए एक चिन्ह, वो इसे नहीं करने जा रहा है। आपको इस समय इन स्वर्गदूतों की मुलाकात के लिए पवित्र हो जाना चाहिए। और मुझे अनुभव हुआ मैं अपने आपे में नहीं हूँ, आपको याद है, और मैं पश्चिम में था। स्वर्गदूत पूर्व से आ रहे थे और जैसे ही वे समीप आए मैं उनके साथ उठा लिया गया था। आपको स्मरण है, पूर्व से आ रहे थे। और भाई फ्रेड एक गवाह आज रात्रि यहाँ पर है, और भाई नॉर्मन, जैसे कि हम नीचे गए, मैंने उस व्यक्ति को लगभग राजी किया कि वो रुककर अपना शिकार कर ले। क्या ये ठीक बात है भाई सॉथमैन? हाँ, वहाँ पर खड़े हैं, मैंने राजी किया, परंतु फिर भी उन्होंने कहा वो ये नहीं करेगा। मैंने कुछ भी नहीं कहा और चला गया। तंबू के एक और कुछ बैठा हुआ था उस दिन, भाई सॉथमैन आपको याद है, और मैं, और जैसे ही कुछ बातें बताई जा रही थी जो मैंने आपको बताया, और भाई नॉर्मन कहाँ है? वहाँ पीछे। उन्हें शपथ खिलाई कि उल्लेख नहीं करेंगे कि क्या घटित हुआ था। क्या ये ठीक बात है? क्या मैं घूमकर और उस तंबू से निकल गया इस प्रकार से? क्या यह ठीक बात है? क्योंकि यही जो ये था, ठीक जो ये था, और जानते हुए कि मैं ये कह नहीं सका जब तक ये ना हो गया। देखिए, यदि लोग इसे समझेंगे। और क्या आपने ध्यान दिया कि वो एक स्वर्गदूत, मैंने कहा उनमें से एक निराला स्वर्गदूत था, वो मुझे बाकियों से अधिक ध्यान से देख रहा था। आपको याद है, वे एक झुंड में थे, तीन एक ओर और एक चोटी पर, और एक मुझसे अगला यहाँ उल्टे हाथ से सीधे को गिने सातवां स्वर्गदूत होगा। वो अधिक चमकदार था बाकियों से, वो मेरे लिए अधिक अर्थ रखता था। आपको याद है मैंने कहा उसका सीना बाहर को निकला हुआ इस प्रकार से और पूर्व की ओर उड़ रहा था। आपको याद है इस प्रकार से? मैंने कहा उसने मुझे ऊपर खींच लिया, मुझे ऊपर उठा लिया। आपको ये याद है? यहाँ ये है, एक सातवीं मोहर के साथ, वो चीज जिससे मैं सारे जीवन आश्चर्यचकित रहा। आमीन। वे दूसरी मोहरें मेरे लिए बहुत अर्थ रखती हैं, निसंदेह, परंतु ओ, आप नहीं जानते इसका क्या अर्थ है, क्योंकि जीवन में एक बार मैंने प्रार्थना की, मैंने परमेश्वर की दुहाई दी। मैं फीनिक्स की सभा के बाद लोगों में कोई वहाँ मेरे साथ थे जानते हैं, मैं पहाड़ों में पड़ा रहा। एक प्रातः मैं उठा और सबीनों की घाटी में चला गया, वे बड़े बड़े उबड़ खाबड़ ऊंचे पहाड़, और मैं उनमें चला गया, और वहाँ एक छोटी पगडंडी थी। वहाँ से आगे बढ़ जाने के बाद लेमन पहाड़ पर चले जाते हैं, जो कि 30 मील पैदल मार्ग है। लगभग 30 फुट की बर्फ वहाँ पर है, इसलिए वहाँ ऊपर पहाड़ पर बहुत सवेरे दिन निकलने से पहले इस पगडंडी से ऊपर जा रहा था। किनारे लुढ़के हुए पत्थर, मुझे इस ओर घूमने की अगुवाई हुई और मैं घूम गया, और किसी बड़े दांतेदार चट्टानों में, ओ प्रभु, सैकड़ों फुट ऊंचे, और मैंने उन चट्टानों के बीच अपने घुटने टिकाए। मैंने ये बाइबल रख दी और ये पुस्तक रख दी, ये छोटी पटिया। मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर, इस दर्शन का क्या अर्थ है? मैं हूँ। मैंने कहा, प्रभु ये क्या, इसका अर्थ मेरा मरना है? आपको याद है मैंने आपको बताया, मैंने सोचा इसका अर्थ मेरी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि किसी चीज का धमाका हुआ, यहाँ तक इसने मुझे टुकड़ों में हिला दिया। आपको ये याद है? कितने ये जानते हैं, ये सुना है, क्यों? निश्चय ही, देखिए आप सब। और मैंने सोचा इसका अर्थ मेरी मृत्यु हो सकता है, और तब कमरे में मैंने कहा था, क्या 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 था ये प्रभु, इसका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ मैं मरने जा रहा हूँ? यदि ये ठीक है, मैं अपने परिवार को नहीं बताऊंगा, बस मुझे जाने दें। देखिए यदि मेरा यह काम पूरा हो गया है। और मैंने कहा अब ये क्या था, परंतु उसने एक गवाह को वापस भेजा। आपको याद है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो नहीं था, ये मेरे कार्य का आगे बढ़ना था। ओ आप समझे समझे और सबिनो कैनियन में बैठा हुआ था। स्वर्गीय पिता ये जानता है, ठीक इतना ही सत्य है। आप इसे घटित होते हुए देखते हैं। वे स्वर्गदूत नीचे आए और हर संदेश का वैसे ही समर्थन किया। तब आप जानते हैं चाहे ये परमेश्वर से आता है या नहीं, ये आपको दर्शन के द्वारा पहले बता दिया गया। जब तक सभाएं समाप्त नहीं हो जाती मैं आपको बता नहीं सकता था, क्योंकि मुझे मना किया गया था। सबिनो कैनियन में मैं उस प्रातः बैठा हुआ था, मेरे हाथ ऊपर की ओर थे और मेरा हवा ने मेरे पुराने काले टोप को उड़ा दिया था। जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था अपने हाथ ऊपर किए प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा प्रभु परमेश्वर इसका क्या अर्थ है, प्रभु मैं इसे नहीं समझ सका, मुझे क्या करना है। यदि ये मेरी घर वापसी का समय है तो मुझे यहाँ से जाने दें, जहाँ की वे मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मातम करे यदि मैं जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि परिवार सोचे मैं बस कहीं घूमने गया हूँ और वे मुझे नहीं पाएंगे। मुझे दूर छिपा दे यदि मैं जा रहा हूँ, क्यों मुझे जाने दे। संभव है जोसेफ मेरी बाइबल को यहाँ किसी दिन रखे हुए पाए और ये उसे उपयोग करने देना। देखिए यदि मैं जा रहा हूँ तो मुझे जाने दे प्रभु। और मेरे हाथ उठे हुए थे और अचानक से कोई चीज मेरे हाथ में लगी। मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता क्या मैं नींद में था, मैं नहीं जानता क्या मैं भाव समाधि में था, मैं नहीं जानता क्या ये एक दर्शन था, मैं नहीं बता सकता आपको। केवल एक ही चीज मैं कह सकता हूँ, जो मैं ठीक वैसी ही चीज जैसे वे स्वर्गदूत थे। ये मेरे हाथ से टकराई और मैंने देखा और ये एक तलवार थी और इसका हत्था मोतियों का था, वास्तव में सुंदर, और उसके ऊपर सोने की सुरक्षा पट्टी और फाल कुछ क्रोम चांदी जैसा। ये केवल वास्तव में चमकदार थी और इसकी धार इतनी तेज थी, ओ प्रभु। और मैंने सोचा क्या ये सुंदरतम चीज नहीं, मेरे हाथ में ठीक बैठी थी। मैंने सोचा ये तो बहुत ही सुंदर है, परंतु मैंने कहा अरे मैं तो सदा ऐसी चीज से डरता हूँ, एक तलवार। मैंने सोचा इसका मैं क्या करूँगा। और ठीक तभी एक आवाज ने वहाँ हिला दिया, जिसने चट्टानों को हिला दिया, कहा ये एक राजा की तलवार है। और तब मैं इसमें से बाहर आ गया, विशेष तलवार राजा की। अब यदि इसने कहा होता राजा की एक तलवार, परंतु इसने कहा विशेष तलवार विशेष राजा की, और केवल एक ही विशेष राजा है और वो परमेश्वर, और उसकी एक तलवार है वो उसका वचन जिसके द्वारा मैं जीवित हूँ। ये इसलिए परमेश्वर मेरी सहायता करे, यहाँ आपके पवित्र मेज पर खड़ा हूँ, उसके पवित्र वचन के साथ यहाँ रखा है, ये वचन है। आमीन। ओ क्या ही दिन है जिसमें हम जी रहे हैं, क्या ही महान बात है। इस भेद और गुप्त को देखिए, वो तीसरा, मैं वहाँ खड़ा हुआ था जब इसने मुझे छोड़ा, कुछ मेरे पास आया और कहा डर मत। अब मैंने कोई आवाज नहीं सुनी जैसे कि कोई मेरे अंदर से बोला। मुझे आपको सत्य ही बताना है कि ठीक क्या घटित हुआ। कुछ टकराया और कहा डर मत, ये तीसरा खिंचाव है, तीसरा खिंचाव। आपको ये याद है उसने कहा इस पर तेरे यहाँ बहुत से नकल करने वाले थे जिसकी तूने व्याख्या करने की कोशिश की, परंतु कहा इसकी कोशिश भी ना करना। आपको याद है, कितनों को वो दर्शन याद है, क्यों ये पूरा हो गया, ये टेप पर है और सब जगह। ये लगभग 6 वर्षों पहले 7 वर्ष पहले कहा इसकी व्याख्या करने का यत्न ना करना, कहा ये तीसरा खिंचाव है, परंतु मैं तुझसे वहाँ मिलूंगा, ये ठीक बात है। उसने कहा कोशिश ना करना। मैं वहाँ एक छोटे बच्चे के जूते के साथ खड़ा था जब उसने मुझे ये बताया, कहा अब अपना पहला खिंचाव बनाओ और जब तुम ये करते हो मछली चारे के पीछे भागेगी, कहा तब अपने दूसरे खिंचाव पर ध्यान देना, कहा क्योंकि ये केवल छोटी मछली होगी। उसने कहा तब तीसरा खिंचाव इसे ले लेगा। तब वे सारे सेवागण मेरे चारों ओर घिराए, बोले भाई बड़ा हम जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं। हालेलुया भाई बड़म, यही जहां मैं सदा बंद जाता हूं प्रचारकों के झुंड के साथ, समझे। मैं लोगों से प्रेम करता हूं, वे आपसे चाहते हैं कि हर चीज की व्याख्या कर दें, इसकी उसकी। और मैंने कहा भाई ओह, मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैंने कहा मैं मछली पकड़ना समझ गया हूँ। अब मैंने कहा पहली चीज जो आपको करनी है यहाँ विधि है, ये हो गया। अब देखिए सारी मछली आसपास, आपको कांटे को झटका देना है, भाई यही मछली पकड़ने की सही युक्ति है। इसलिए मैंने कहा कांटे को झटका दो। अब आप देखिए, जब मैंने कांटे को झटका मारा पहली बार और मछली ने उसमें से छुटा लिया, परंतु वे छोटी छोटी थी और ये जैसे कि वे पकड़ रही है, इसलिए तब मैंने कहा तब आप करेंगे, आप सही बैठाएंगे, और मैंने इसे झटका मारकर बाहर कर दिया किनारे पर। और मेरे पास एक मछली थी, परंतु ये ऐसे लग रही थी जैसे चारे के ऊपर खाल है। ये बस थी, ये इतनी छोटी थी। और तब मैं वहाँ खड़ा हुआ था और किसी चीज ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि ये नहीं करना है। मैं रोने लगा, सारी डोर मेरे चारों ओर उलट गई थी इस प्रकार से, और मैं वहाँ खड़ा हुआ था इस प्रकार से, सिर नीचे करके रो रहा था। मैंने कहा, परमेश्वर ओ मैं, मुझे क्षमा कर दें, मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ प्रभु, मैं नहीं, मुझे क्षमा कर दें। और मैं, मेरे पास ये डोर थी और ये जो मेरे हाथ में था एक छोटे बच्चे की जूती, लगभग इतनी लंबी, और मेरे पास वो फीता, वो लगभग इतना मोटा जितनी मेरी उंगली, लगभग आधा इंच जैसी, और जूती में फीता डालने के छेद का आकार लगभग संभवतः एक इंच के 1/16 से छोटा छेद, और मैं इसमें फीता डालने की कोशिश कर रहा था इस छोटे जूते में, इस इंच भर मोटे फीते को। ओह, एक आवाज आई और बोली, तुम पेंटिकॉस्टल बालकों को अलौकिक बातें नहीं सिखा सकते। कहा, अब उन्हें छोड़ दो। और तभी उसने मुझे ऊपर उठा लिया, मुझे ऊपर ले गया और मुझे ऊंचे पर बिठा दिया जहां सभा चल रही थी, एक तंबू जैसा दिखाई पड़ा या एक एक प्रकार का आराधनालय। और मैंने देखा और वहाँ एक छोटा संदूक था, जैसे उसके अंदर एक छोटा सा स्थान था, और मैंने देखा कि ज्योति किसी से बातें कर रही थी मेरे ऊपर। वो ज्योति जो आप वहाँ चित्र में देखते हैं, ये घूमती हुई मेरे पास से चली गई इस प्रकार से, और तंबू के ऊपर पहुँच गई और कहा, मैं तुझसे वहाँ मिलूंगा, और कहा, ये तीसरा खिंचाव होगा और तुम्हें इसे किसी को नहीं बताना होगा। और सबिनो कैनियन में उसने कहा, ये तीसरा खिंचाव है। और वहाँ तीन महान बातें जो इसके साथ चलती हैं, और एक आज खोल दी या बीते कल, दूसरी वाली आज खोल दी, और वहाँ एक बात जिसका मैं अनुवाद नहीं कर सकता क्योंकि ये एक अनजानी भाषा में है, परंतु मैं ठीक वहाँ खड़ा था और सीधा उसकी ओर देख रहा था, और ये तीसरा खिंचाव आ रहा है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा, ओ प्रभु, यही कारण है सारा स्वर्ग शांत था। अब अच्छा हो कि मैं ठीक यहाँ पर रुक जाऊँ। देखिए, मैं बस रुक जाने का अनुभव कर रहा हूँ इसके विषय में, और अधिक ना कहूँ, समझे? इसलिए बस याद रखें, सातवीं मोहर, कारण कि ये खोली नहीं गई, देखिए, कारण ये प्रकट नहीं की गई, इसके विषय में किसी को भी नहीं जानना है। और मैं चाहता हूं कि आप जानें, इसके पहले यहां तक कि मैं इस विषय में कोई शब्द जानूं, ये दर्शन वर्षों पहले आया था, आपको ये याद है? और ये यहां ठीक वैसे ही जैसे ये दूसरा वाला, ठीक सीधा वचन में ठीक बैठा जहां ये था। और परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है, मैंने कभी भी एक बार ऐसी बात नहीं सोची, और ये यहाँ पर था, ये हमारे सोचने से पहले। ओ प्रभु, ये दर्शाता है कि ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि देखिए, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा में सही बैठता है संदेश के अंत में। अब ध्यान दें, अंत समय के लिए संदेश, ये मोहर, कुल मिलाकर इसने सारी छह मोहरें प्रकट कर दी हैं, परंतु वो सातवीं के विषय में कुछ नहीं कहता। और अंत समय की मोहर जब ये आरंभ होती है, ये बिल्कुल पूरी रीति से गुप्त है बाइबल के अनुसार। इसके पहले कि इसे जाने, और प्रकाशित वाक्य 10:1-7, 1-7, दसवां अध्याय 1-7 को याद रखें। सातवें दूत के संदेश के अंत में परमेश्वर के सारे भेद मालूम हो जाएंगे। हम लोग अंत समय में हैं, सातवीं मोहर के खुलने पर। अब मैं कैसे जानता हूँ? उस दिन बीते रविवार आज से एक सप्ताह पीछे जब मैं प्रचार कर रहा था, नम्र बने, नम्र हो जाएं। याद रखें, परमेश्वर छोटी बातों में व्यवहार करता है। मैंने अनुभव नहीं किया कि वास्तव में ये क्या था जिसके विषय में बातें कर रहे हैं, और अब मैं ये देखता हूँ, ये इतने नम्रता में है। आप ये सोचेंगे कि वेटिकन में कुछ इस प्रकार से प्रकट होगा या, परंतु ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान आएगा। ये हमारे प्रभु के जन्म के समान आता है चरनी में। परमेश्वर की महिमा हो। अतः मेरी सहायता करें, समय निकट है। आमीन। हम यहाँ पर हैं, ओ प्रभु। अब क्या आप देखते हैं परमेश्वर के दर्शन का सत्य? वे सात सरदूत मुझे पश्चिम से लाए, वे पश्चिम से आ रहे थे, वापस पूर्व में आए, यहाँ इस संदेश के लिए ला रहे थे आज रात्रि, ओ प्रभु। अब उस महान गर्जन की आवाज और उद्देश्य जो यहाँ लाया गया प्रकट हो गया है कि ये, और सिद्ध किया कि ये परमेश्वर की ओर से है। अब जरा सोचें, मुझे ये मोहरें नहीं मालूम थीं और वे इस सप्ताह में प्रकट की गईं। क्या किसी ने ये सोचा कि वे सात स्वर्गदूत ये होंगे? संदेश होने के नाते जो आ रहा था, वे स्वर्गदूत मुझे यहाँ वापस इसके लिए लाए, समझे? स्मरण रहे, वो सातवां संदेशवाहक था, सात संदेशवाहक थे। विशेष वाला मुझे सातवां स्वर्गदूत, वो मेरे लिए और से अधिक था। अब देखिए, वे इस प्रकार से खड़े थे। अब हम चाहते हैं कि आप ध्यान दें, और मैं यहाँ खड़ा था और मैं उन दूसरों को देख रहा था। देखिए, एक पहला झुंड छोटी चिड़ियों का नीचे की ओर पंख मारे, आपको वे याद हैं, और वे सारी पूर्व की ओर उड़ गईं। और दूसरे वाले अधिक चमकदार बड़ी चिड़ियाएं पंडुकी जैसी दिखाई पड़ी, नुकीले पंख, वे पूर्व की ओर उड़ गईं। पहला खिंचाव, दूसरा खिंचाव, और तब अगले स्वर्गदूत थे, और जैसे, और मैं ठीक वहाँ खड़ा था और ये धमाका हो गया था, और मैं इस ओर देख रहा था पश्चिम की ओर, और वे आए, बस मुझे ऊपर उठा लिया वहाँ से, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मैं चला गया। और उनमें से एक आ रहा था, वो था जो मुझे बहुत ही विचित्र दिखाई पड़ रहा था, और वो मेरे बाईं ओर से, जहाँ से मैंने उस झुंड में प्रवेश किया, परंतु उल्टे से सीधे को गिने तो ये सातवां स्वर्गदूत होगा, सीधा आ रहा था। अब स्मरण रखें, सात संदेशवाहक। क्या आपको सफेद पत्थर वाला पिरामिड याद है, जूनियर जैक्सन के स्वप्न का, जिसका मैंने आपको अनुवाद दिया था? समझे, ध्यान दें, वो रात्रि जब मैंने छोड़ा और मैं, छह स्वप्न आए थे, और उनमें प्रत्येक सीधी सीधी एक ही बात थी। तब दर्शन आरंभ हुआ और मुझे पश्चिम में भेज दिया, और जूनियर वो देख रहा था, जबकि ध्यान दें, देखिए कितना सिद्ध। अब मैं आशा और भरोसा कर रहा हूँ कि आप लोग अनुभव करते हैं कि मैं यत्न कर रहा हूँ कि इस अनुग्रह को यीशु मसीह पर डाल दूँ, जो कि इस सब का लिखने वाला है, और केवल कारण कि आपने मुझे कभी नहीं सुना होगा कि आपके जीवन में पहले इस प्रकार से बातें की हों, परंतु ये घड़ी आ रही है, समझे? समझे, ध्यान दें। अब इसे आपके लिए निश्चित करने के लिए, ताकि ये गहराई में बैठाया जा सके, मेरा आपको फिर से छोड़ना तय है। मैं नहीं जानता मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे दूसरे स्थानों में सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, परंतु अब वो, आप कह सकते हैं मैंने सब प्रकार की धर्मांधता सुनी है, मैं नहीं जानता क्या, मैं किसी दूसरे मनुष्य का न्याय नहीं कर सकता, मुझे केवल परमेश्वर को जो मैंने कहा उत्तर देना है अपने लिए। परंतु क्या कभी ऐसा समय हुआ कि मैंने आपको कभी कोई बात बताई प्रभु के नाम में जो इन वर्षों में सही नहीं थी? कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने सदा वही बताया जिस प्रकार से उसने ये बताया। अब मैं आपको जरा दिखा दूं कि ये बिल्कुल सत्य है और इसकी पुष्टि। अब याद रखें, यदि कोई एक आत्मिक या भविष्यद्वक्ता हो, मैं प्रभु उससे दर्शनों में बात करूंगा और उस पर स्वप्नों से प्रकट करूंगा। स्वप्नों का अर्थ क्या है? यूसुफ वो स्वप्नों का अर्थ बता सकता था और बोलता, और दर्शनों का देखना, क्या ये सत्य है? अब इस पर ध्यान दें कि अब जब ये घटित हुआ, जूनियर एक मैदान में खड़ा था जहाँ एक बड़ा पिरामिड वहाँ इस प्रकार से, और वहाँ चट्टान पर कुछ लिखा हुआ था, और मैं उसको लोगों पर प्रकट कर रहा था। क्या ये ठीक है जूनियर? लगभग एक वर्ष पहले की घटित हुआ। अब अगली बात पर ध्यान दें। मैंने एक प्रकार की छड़ ली और इसे काटा, और उसके अंदर सफेद पत्थर था, उस पर कुछ नहीं लिखा था, और उस समय मैं पश्चिम की ओर चलने लगा, और मैंने उन सबको बताया, मैंने कहा पश्चिम में ना जाना, यहीं टिके रहना और इसे देखते रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। पश्चिम में धमाके के लिए गया, वापस पूर्व को आया, पवित्र आत्मा के साथ, इन ना लिखे हुए वचनों के अर्थ के साथ। यदि ये सिद्ध परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप जानें ये क्या है। मित्रों, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको ये दिखाने को कि हम अंत समय में हैं। अब यदि वे दूसरे सिद्धता से बिंदु पर हैं वचन के साथ, इसलिए ये ठीक बिंदु पर है वचन के साथ। हम यहाँ हैं, हम अंत पर हैं मित्रों। जल्द ये होगा, समय समाप्त हो गया, लाखों अपने जीवन गंवा देंगे, लाखों होंगे जो अब ये विश्वास करते हैं कि वे बचे हुए हैं, जो कि परमाणु युग के लिए चारा गिने जाएंगे। हम अंतिम घड़ी में रह रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी सहायता से उसके लोगों के लिए, कि वे जल्द ही मसीह के प्रकट होने को सामने देख सकें। भाई बहनों, कितनी देर और? हो सकता है 20 वर्ष, हो सकता है 50 वर्ष, हो सकता है 100 वर्ष, मैं नहीं जानता। और हो सकता है इसी प्रातः, हो सकता है अभी आज रात्रि, मैं नहीं जानता। और कोई कहता है वे जानते हैं, वे गलत हैं, समझे? वे नहीं जानते, केवल परमेश्वर जानता है। अब ध्यान दें, परमेश्वर के द्वारा मेरी सहायता हो, मैं सच बताता हूँ कि ये मेरे लिए आत्मिक पहचान है, पवित्र आत्मा के द्वारा परखना और उन सब के द्वारा बाइबल में अपने स्थान को प्रमाणित किया। अब ये बड़ा भेद इस मोहर के नीचे क्या है, मैं नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, मैं इसे समझ नहीं सका, मैं ये नहीं बता सकता कि ये क्या है, कि इसने क्या कहा। परंतु मैं जानता हूं कि ये वे सात गर्जने स्वयं में बोल रही हैं, ठीक मिलकर सात बार सात भिन्न समय में धमाका कर रही है, और ये किसी और चीज में खुल गई जो मैंने देखा। तब जब मैंने ये देखा, मैंने अनुवाद की प्रतीक्षा करी, ये वहां से उड़कर निकला और मैं समझ नहीं सका। ये बिल्कुल ठीक बात है, समझे? ये घड़ी अभी इसके लिए नहीं है, परंतु ये चक्र में चल रहा है। देखिए, ये समीप आ रहा है, इसलिए आपके करने के लिए ये है कि याद रखें कि मैं ये आपसे प्रभु के नाम में बोल रहा हूँ, तैयार रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस समय कुछ हो सकता है। अब जब ये टेप पर आ जाता है, जो कि ये है, ये संभवतः मेरे दसियों हजार मित्रों को मुझसे अलग कर देगा, क्योंकि वे ये कहने जा रहे हैं कि भाई ब्रनम अपने आप को एक दास या एक भविष्यद्वक्ता या कुछ परमेश्वर के सामने रखने या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये एक गलती है। मैं केवल आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा है और जो मुझे बताया गया है। और अब आप चाहें जो चाहें, मैं नहीं जानता कौन जा रहा है, क्या घटित होने जा रहा है, मैं नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ कि वे सात गर्जने उस भेद को रखती हैं कि स्वर्ग शांत था। हर कोई समझ गया? ये समय हो सकता है, अब ये घड़ी हो सकती है कि ये महान व्यक्ति जिसके दृश्य में उठने की हम आशा करते हैं, दृश्य में उठे, होने पाए ये सेवकाई जो कि मैंने यत्न किया है कि लोगों को वचन पर वापस लाऊं, नेव रख दी है। और यदि ये तो मैं आपकी भलाई के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ हम दोनों एक समय में नहीं हो सकते, समझे? यदि ये है वो बढ़ेगा, मैं घटूंगा, मैं नहीं जानता। परंतु मुझे परमेश्वर के द्वारा सौभाग्य मिला कि देखूं और निहारूं कि ये क्या था। देखिए, देखिए, इतना ही खुला, अब ये ही सत्य है। और मैं निश्चित हूं कि आपने ध्यान दिया है वे बातें जो इस सप्ताह में घटित हो रही हैं। मुझे निश्चय है कि आपने ध्यान दिया है, वो छोटा कॉलिंस लड़का उस रात्रि वहां पड़ा मर रहा था, वो छोटी ल्यूकेमिया वाली लड़की। परमेश्वर का राज्य आ रहा है और ये नेगेटिव से पॉजिटिव में अधिक हो रहा है, जैसे कि ये था। अब ये लोगों का दम नहीं घुटना चाहिए, न्याय उचितता से, पवित्रीकरण से, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और फिर यहाँ, समझे? हम ठीक परमेश्वर के समीप आ रहे हैं सारे समय। क्या आप मेथोडिस्ट के सेवकों नहीं देख सकते कैसे आपका पवित्रीकरण का संदेश लूथर ने जो प्रचार किया उससे ऊपर था? आप पेंटिकॉस्टलों, क्या तुम्हारा संदेश बपतिस्मे का नहीं देख सकते जो मेथोडिस्ट ने प्रचार किया उससे आगे था? आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है? ओ, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं आगे बढ़ने को, और ये ठीक बात है। और यदि कोई जो गलत का तिरस्कार करता है और लोग कह रहे हैं कुछ जो वास्तव में झूठ है और सच नहीं है, मैं उससे घृणा करता हूँ। परंतु मैं ठोस सत्य से प्रेम करता हूँ। कोई मतलब नहीं इसका कितना भी अनुवाद किया जाए, इस तरह से, उस तरह से। यदि ये सत्य है, परमेश्वर अंततः इसे सत्य के समान ही दिखा देगा। और यदि ये नहीं करता, जल्द ही इन्हीं दिनों में, तो फिर मेरे दर्शन सही नहीं थे। अब आप देखिए कि मैंने अपने आप को कहाँ रखा है। भाई ब्रैनम ये कब होगा मैं आपको नहीं बता सकता, मैं नहीं जानता। परंतु इन दिनों में से एक दिन यदि हम इस पृथ्वी पर फिर से कभी ना मिल सके, तो फिर हम सामने मिलने जा रहे हैं वहाँ मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने। और आप पाएंगे कि उस कमरे में प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आ रहा है, जैसे कि वे सब बाकी थे, कि वे उस मोहर का एक भेद, कारण कि वो प्रकट नहीं किया गया। ये सात गर्जने थी जिन्होंने अपनी आवाजें निकाली, और ये वहाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके विषय में कुछ नहीं जाना गया, यहाँ तक कि ये लिखा भी नहीं गया। इसलिए हम अंत समय में हैं, ये हम यहाँ हैं। उसके वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं यीशु मसीह के लिए उसका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसके भेजे बिना, जो हमारे पापों का प्रायश्चित है, हम पापों की गंदगी में होते बिना किसी आशा के। परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा उसका लहू सारे पापों को धो देता है, जैसा कि निरंजक की बाल्टी में स्याही की बूंद। आप स्याही को फिर कभी नहीं पाएंगे। जब हमारे पाप स्वीकार कर लिए जाते हैं, ये यीशु मसीह के लहू में डाल दिए जाते हैं, वे फिर कभी नहीं जाने जाते। परमेश्वर उन्हें भूल जाता है, वे कभी भी किए ही नहीं गए। और जब तक वो बलिदान वहाँ हमारे लिए प्रायश्चित के लिए रखा है, तब वो पर्याप्त है। यही है, देखिए, हम फिर और पापी नहीं हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से मसीही हैं। अपने आप में ये याद रखें, हम संभवतः वैसे ही बुरे होंगे जैसे कभी थे, परंतु देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ है, और यही जिसने हमें बनाया है, जो आज हम हैं, मसीह भाई और बहन। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक सप्ताह रहा। मैं थक गया, मेरा मस्तिष्क थक गया, क्योंकि मैं अपने सबसे अच्छे से जो मैं कर सका, और हर दिन कुछ विचित्र चलता रहा। मैं विस्मित रहा कमरे में चलते हुए, और वहाँ कुछ मिनटों के लिए, और कुछ देखा, मुझे पूरी तरह से घुमा दिया। और यहाँ मैं उसमें जाऊंगा और टिप्पणियों को लूंगा। मैंने डॉक्टर स्मिथ की पुस्तकें उठाई, उरिया स्मिथ और ओ, और सारे लेखक और हर चीज, और उसमें पढ़ा, उनकी पुस्तकों में पढ़ा। मैं कहता हूँ, अब यहाँ छठवीं मोहर है, यहाँ चौथी मोहर है, अब ये मनुष्य क्या कहता है? वो कहेगा, भाई ये वो या कुछ था। मैं इधर देखूंगा, दूसरे व्यक्ति को लूंगा, वो कहेगा ये ऐसे ऐसे था, और ये ऐसा लगता है, मैं बस इसने ठीक काम नहीं किया, समझे। तब मैंने सोचा, प्रभु ये क्या है? और मैं फर्श पर चहलकदमी करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं घुटनों पर टिक कर प्रार्थना करता हूँ, और वापस जाकर बाइबल उठाता हूँ, बैठ जाता हूँ, पढ़ता हूँ, आगे पीछे चलता हूँ। तब अचानक से, जब मैं शांत हो गया, यहाँ ये इस प्रकार खुल गया, तब मैं जल्दी से कलम उठाता हूँ और इस प्रकार से लिखता जाता हूँ, मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ और कर रहा हूँ, इस पर ध्यान दे रहा हूँ, इस प्रकार से, जब तक कि मैंने इसे लिख नहीं लिया, तब मैं इसे लूंगा और बाकी दिन जाकर इसे खोजता हूँ, और देखता हूँ कि ये सारे वचनों में से होते हुए मेल खाता है, हर प्रकार से, तब सारी बातों को सिद्ध करता है, समझे। मैंने इसे यहाँ पाया, और मैं सोचता हूँ, अब कितनों ही लोगों को दर्शन मिले थे, वहाँ बहुत सों के प्रकाशन थे। यदि ये वचन के विरोध में है, तो इसे छोड़ दें, ये ठीक बात है, इसे छोड़ दें। अब तब मैं इसे लेकर चलता हूँ, इस प्रकार से लेकर चलता हूँ। मैं छोटी छोटी बातों को यहाँ जोड़ता हूँ। मैंने सोचा, भाई अब कक्षा इसे सुनकर आनंदित होगी, क्योंकि ये यहाँ मेल खाता है, और यहाँ पर, अब आइए देखें, ये यहाँ पर क्या कहता है। जी हाँ, और हाँ, यहाँ ये है, ठीक यहाँ, समझे। और इसे बाइबल में होकर निकालता हूँ, और चीजों को सप्ताह भर में होकर मिलाता हूँ। ये यहाँ टेपों पर है, आपका उनके लिए स्वागत है। और मैंने ये अपने सबसे अच्छी जानकारी से किया है, मसीही संगति में, परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के लिए, यीशु मसीह के द्वारा। मैंने अपना सबसे अच्छा किया है, जो मैं जानता हूँ कि कैसे करूँ। अब आप लोग सबसे अच्छे लोगों में से हैं, कोई इतनी भली प्रकार से नहीं बैठ सका। आप सब यहाँ 1 बजे आए दिन में, और 5 बजे तक की, जब भी ये खुले, ये आराधनालय, और लाए, लोगों को अंदर आने दो। आप लोग ठंड में खड़े हुए, आप लोग बर्फ में बैठे, आप लोगों ने सब कुछ किया, दीवार के चारों ओर लगकर खड़े हुए, जब तक कि टांगे ना दुख गईं। मैं पुरुषों को देखता हूँ, बैठे हैं, स्त्रियों को बैठने दिया, और अलग अलग इस प्रकार से खड़े हुए चारों ओर बैठे हैं। मैंने सोचा प्रभु सारा ये सारा सप्ताह भेद भरा रहा, सारी चीजें एक प्रकार से विचित्र थीं। कैसे कब लोग आए, उन्हें चारों ओर खिड़कियों में खड़े हुए देखा, दरवाजों पर, पीछे, चारों ओर, पीछे, सब जगह सुन रहे हैं। और जहाँ तक एक वक्ता, मैं एक वक्ता से बहुत दूर हूँ। मेरे पास इतनी समझदारी है कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं वक्ता नहीं हूँ। परंतु क्यों लोग बैठेंगे और इस प्रकार से सुनेंगे, वे क्यों ये करेंगे? वे मुझ जैसे व्यक्ति को सुनने नहीं आते, परंतु वे आ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ है कि लोगों को खींच रहा है, समझे? इसमें कुछ है जो इन्हें खींच रहा है। जैसे कि मेरी पत्नी यहाँ मंच पर खड़ी हुई और गाया जब मैंने आरंभ किया, वे पूर्व और पश्चिम से आए, वे दूर देश से आए कि राजा के भोज में खाना खाएं, उसके नेवतेहारियों के समान। ये तीर्थ यात्री कितने धन्य हैं, उसके पवित्र मुख को ताक रहे हैं, एक दिव्य चमक की ज्योति के साथ, उसके अनुग्रह के सबसे धन्य भागीदार, उसके ताज में रत्नों के समान चमक रहे हैं। आप सदा अपने मस्तिष्क में रखने पाए, यीशु मसीह के ताज में एक रत्न बनूं। पौलुस ने कलीसिया से कहा, तुम लोग उसके ताज में एक रत्न हो। हम यीशु मसीह के ताज के एक रत्न होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते इसमें किसी मनुष्य को ना डालें, आप मेरे विषय में कुछ भी भूल जाएं। मैं आपका भाई हूँ, एक पापी, अनुग्रह से बचाया हुआ, जीने के योग्य नहीं। ये बिल्कुल सच है। मैं नम्र बनने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य है। मुझ में कुछ नहीं, एक अच्छी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरी बिचारी धुंधली आँखों को समय के पर्दे के पार देखने दिया और उन चीजों को सामने देखा और मैं वापस आया। जब मैं एक छोटा लड़का था, मैंने लोगों से प्रेम किया। मैं हमेशा चाहता था कि कोई मुझसे प्रेम करे और मुझसे बातें करे। किसी ने ये नहीं किया। मेरे परिवार के नाम के कारण कोई मुझसे बात नहीं करेगा। परंतु जब मैंने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया, तब हमारे लोग, पृष्ठभूमि आयरिश होने के नाते, मैंने सोचा संभव है वे सारे कैथोलिक थे और हो सकता है वो ये रहा होगा। मैं वहाँ गया और वो किसी प्रकार से था, और मैं पहले बैप्टिस्ट कलीसिया में चला गया और वो दूसरे मार्ग से था। मैंने कहा, प्रभु कोई तो मार्ग होगा जो सत्य का है, और किसी चीज ने कहा ये वचन है। मैंने वचन पकड़ लिया, हर कहीं हर दर्शन को देखें। वो दिन मैंने कोने के पत्थर को वहाँ रखा और इसे वहाँ रखा। मैंने उस पर वो लिखा जो उसने मुझसे उस प्रातः दर्शन में दिखाया था। समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता के साथ उल्हाना और शिक्षा दे, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों की ओर लगाएंगे। और मैंने वे दो पेड़ देखे जिनके पास मैं खड़ा हुआ, उन्हीं बातों को किया। ये ठीक बात है, हम वहीं पर हैं और ये सत्य है। और अब आप नहीं होंगे, याद रखें, मैं फिर से आपको उत्साहित करूं, मत कहिए आपको धन्यवाद, किसी को भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर सोचें, नहीं कहें, कोई सेवक या कोई किसी वरणहार को, उसके विषय में कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि कोई नहीं, मैं चिंता नहीं करता वो कौन है, किसी मनुष्य में कुछ अच्छा नहीं। ये ठीक बात है। यदि यहाँ सारी तुरहियाँ रखी हों और उनमें से किसी निश्चित संगीत से अलग सुर दे, ये मनुष्य है। वे तुरहियाँ पूरी रीति से मूक हैं। ये तो व्यक्ति है जो तुरही को बजा सकता है, जो जानता है वो क्या करने जा रहा है, जिसने तुरही उठाई है। तुरही को इससे कुछ लेना देना नहीं, आवाज तो उसके पीछे की बुद्धि से आ रही है। ये ठीक बात है। इसलिए सारी तुरही एक सी हैं, सारे मनुष्य एक से हैं, सारे मसीही एक से हैं। हम में से कोई महान पुरुष नहीं है, हम बड़े पुरुष नहीं हैं, ना ही महान स्त्रियां। हम सब भाई और बहन हैं, सब एक से हैं, एक ही घेरे में। हम महान नहीं हैं, कोई अपने को दूसरे से बड़ा ना बनाए, एक चीज में नहीं, करने को नहीं श्रीमान, परंतु हम सब बस मनुष्य हैं। चीजों का अनुवाद करने का यत्न ना करें, कुछ भी और करने का यत्न ना करें, साधारण जीवन जिए, यीशु मसीह को महिमा और आदर देते हुए। अब हर कोई इसे समझ गया, आमीन। उसे पूरे हृदय से प्रेम करें, क्या आप ये करते हैं? मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैं करूँगा। मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी वृक्ष पर। परमेश्वर की महिमा हो। क्या सब अच्छे प्रकार से समझ गए? क्या हर कोई विश्वास करता है? स्मरण करें, जब मैंने पहले आरंभ किया, किसने हमारी बातों का विश्वास किया? किस पर प्रभु का भुजबल प्रकट हुआ? क्या उसने आप पर प्रकट किया? उसका अनुग्रह, उसकी भलाई, आमीन। बस स्मरण रखें, अपने पूरे हृदय से उससे प्रेम करें। अब मैं घर वापस जा रहा हूं, मैं फिर यहां वापस आऊंगा। प्रभु ने चाहा पहली जून के आसपास। हो सकता है यदि प्रभु मेरे हृदय में डाले, हो सकता है मैं जल्द किसी समय गर्मी में, जैसे जून, या कहीं हो सकता है जाड़े से पहले, यदि प्रभु रुका रहता है, मैं वापस आना चाहता हूं और दूसरी 7 रातें 7 क्रोहियों के लिए तय करूंगा। क्या आप ये पसंद करेंगे? क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा? ठीक है, जब तक हम फिर से ना मिलें, याद रखें, ये अच्छा पुराना गीत है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया, और मेरे उद्धार को खरीदा। कलवरी के वृक्ष पर अब मैं चाहता हूं कि आप अपना सर झुकाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इसके पहले कि पास्टर विसर्जित करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे स्वर्गीय पिता, होने पाए प्रभु लोग समझें, जो कि मैं निश्चित हूं कि यहाँ कुछ हैं जो नहीं समझे, परंतु पिता होने पाए वे उद्देश्य को जान जाएं और वे समझ जाएं। पिता, ये आपका अनुग्रह उनके लिए है, ये बातें प्रकट की गई हैं। और प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस ज्ञान की जानकारी के लिए कि ये बातें तूने हम पर प्रकट की हैं। और मैं हरेक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो यहाँ पर है, हरेक जो सभाओं में उपस्थित हुआ, यदि कोई ऐसा हो जो विश्वास ना करता हो, प्रभु होने पाए वे विश्वासी हो जाएं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, वे सब जो टेपों के द्वारा संदेश को सुनेंगे, और यदि ये पहुँचे, जो कि ये पहुँचेगा, कोई संदेह नहीं, घरों में और स्थानों में बहुत से अविश्वासी जो सहमत नहीं होंगे, परंतु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक की इसके पहले वो कोई निंदा का शब्द बोले, वे पहले बैठकर वचनों में खोजें जो कि उसके द्वारा कहा गया है, और तब आपसे कहें कि वे सच में निष्कपट हैं और जानना चाहते हैं कि ये सच है या नहीं। और पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो दीवारों के साथ साथ खड़े हुए, जो बाहर की ओर खड़े हुए, जो अपनी कारों में बैठे, उन छोटे बालकों और सब जो वहाँ थे, और वे सारे, प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, कि आप उन्हें आशीषित करेंगे। प्रभु, पहले हर एक को अनंत जीवन दें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनमें से एक भी नष्ट ना हो, एक भी नहीं। और अब पिता, हम नहीं जानते कि ये महान घटना कब घटेगी, परंतु जब हम इन चिन्हों को प्रकट होते देखते हैं, वचन की घटनाएं, ये हमारे हृदय को सीमा से अधिक गर्मा देता है। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी सहायता करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे प्रिय पास्टर भाई नेविल की सहायता करेंगे। प्रभु, उसे अपने पूरे अनुग्रह की सामर्थ्य में बना लें और समझ के साथ, ताकि वो इस रखे हुए खाने को लेकर परमेश्वर के मेमने को खिलाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बीमारियों को हमसे दूर रखें। ऐसा होने पाए कि जब लोग बीमार हो जाएं, कि वे प्रभु यीशु की उपस्थिति और सर्वसामर्थी लहू को याद करें जो वेदी पर है, प्रायश्चित करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे तुरंत चंगे हो जाएंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप शैतान की शक्ति को उनसे दूर रखेंगे और उन्हें हतोत्साहित करें, या उन्हें ये यत्न करने दें कि पंथ बनाएं या शत्रु की किसी सारी सामर्थ को दूर कर दें। प्रभु हमें अपने वचन के लिए पवित्र कर दें, इसे प्रदान करें प्रभु। तब प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे। मैं निर्बल होने लगा हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ मेरे दिन और बहुत सारे नहीं हो सकते, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे कि मैं सच्चा बना रहूँ प्रभु, और ईमानदार और निष्कपट, ताकि मैं संदेश के योग्य हो सकूँ जहाँ तक ये मुझे अपनाए रखने के लिए ठहराया गया है। और जब ये उस समय पर आता है कि मुझे लेट जाना चाहिए और उस नदी पर पहुंचूं और लहरें अंदर आने लगें, ओ परमेश्वर होने पाए मैं योग्य हो सकूं कि इस पुरानी तलवार को मैं किसी को सौंप सकूं जो इसके साथ ईमानदार रहे प्रभु और सत्य को लेगा। प्रभु इसे प्रदान करें और तब तक मेरी सहायता करें कि मैं मजबूत और स्वस्थ और हिम्मत वाला बना रहूं। मेरी कलीसिया की सहायता करें प्रभु, हमें एक साथ आशीषित करें। हम आपके हैं, हम अनुभव करते हैं कि आपका आत्मा हमारे मध्य में है। हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, क्योंकि हम अपने को आपको समर्पित करते हैं आपके वचन के साथ, सेवा के लिए, अपने बाकी जीवन के दिनों के लिए जो इस पृथ्वी पर हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमारे प्रिय बचाने वाले, उसकी महिमा के लिए आमीन। मैं परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उससे प्रेम करता हूँ अपने पूरे हृदय से, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। भाई नेविल, परमेश्वर आपको आशीष दे।
You have just finished hearing the original Seventh Seal as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24th, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Brother Branham did not want this original recording released. The next day, Monday, March 25th, 1963, Brother Branham went to the motel room of Brother Fred Sothman and Brother James McGuire, who were at that time in charge of making the tapes. Brother Branham told these brothers, "I don't want this message sent out the way it is." After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point recorded a new portion of approximately 20 minutes in length. This new portion was then used in place of the original ending. This recording was the only released version of the Seventh Seal until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the Tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape with the original Seventh Seal. The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March 25th, 1963.
अच्छी बात होगी कि वो इस विषय में कुछ नहीं जानता, क्योंकि यदि जानता होता तो वो नकल करता। ये उसकी चालाकी इन चीजों के करने में है, इसलिए परमेश्वर ने इसे ऐसा बनाया कि सारे संसार से छिपा रहे, यहाँ तक कि स्वर्ग से, कि इसे समझने की कोई विधि नहीं है, केवल जैसा कि परमेश्वर स्वयं इसे प्रकट करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप आज रात्रि ध्यान दें कि छठवीं मोहर में, वहाँ छठवीं मोहर का तीन तह का उद्देश्य है, घुड़सवारों का तीन तह का उद्देश्य था। इन सारी चीजों में तीन तह का उद्देश्य रहा है, जो कि हमें वापस तीन पर लाता है, और एक साथ फिर से देखिए, सात मोहरें, सात कटोरे और आदि आदि। अब इन तीनों और सातों में ये परमेश्वर के अंक, उसके गणित में, उसके वचन के प्रकाशन में। अब आप ध्यान दें, जैसे कि सवारों में, अब वहाँ तीन घोड़े बाहर निकले, इनमें से एक सफेद वाला, एक लाल वाला एक काला वाला था और तब चौथे घोड़े में क्यों वे सब एक में मिल गए थे। देखिए एक तीन तह का उद्देश्य। अब परमेश्वर ने वही चीज की, परमेश्वर ने वही किया जब उसने अपना सिंह भेजा जो कि उसका वचन था कि मसीह विरोधी का सामना करे। तब हम ये पाते हैं कि उसने पीड़ा काल के समय में बैल को भेजा, बलिदान का पशु, और इस पीड़ा के काल में यही जो सारे लोग कर सके बस कार्य था, गुलाम और स्वयं को बलिदान के लिए दे देना। और तब हम अगले युग में पाते हैं जो कि सुधारकों का युग था। परमेश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को भेजा, पशु पर मनुष्य का सा सिर, जो कि एक सामर्थ्य थी जो कि सुधारकों में होकर आई। क्या आपने ध्यान दिया? हर कोई आश्चर्य नहीं कि इन दिनों के लोग अब भी उस बीते हुए समय में जी रहे हैं, जैसे कि ये सुधारकों का युग था, क्योंकि वे इसे पुरोहितवाद के मार्ग में होते हुए इसे देख रहे हैं। वे इस धर्म विज्ञान की विधि में देखते हैं जो सिखाया गया। एक समय ये परमेश्वर का मार्ग था, परंतु हम बीते समय को जी चुके। अब हम उकाब के युग में हैं, प्रकाशन का प्रकट होना, सारी बात। अब इसकी तुलना प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय से करें, पद 1 से 7, और हम यहाँ इस प्रकाशन में देखेंगे, यहाँ प्रकाशित वाक्य 10 1 से 7, ये सातवें दूत के संदेश देने के दिनों में परमेश्वर के सारे भेद समाप्त हो जाएंगे। अब हम ये भी पाते हैं कि इसमें कि छठवीं मोहर अब खुल रही है। ये तीन तह उद्देश्य के लिए थी। अब यहाँ वो उद्देश्य था, पहली चीज जो थी कि मूर्ख कुंवारियों को शुद्ध होने के लिए पीड़ाओं के काल में से निकलना है, उसे अपने अविश्वास के पाप से शुद्ध होना है और संदेश को अस्वीकार करने, ये इसने पीड़ा के काल में कर लिया था। हम देखते हैं वे प्रकाशित वाक्य 7 में वे समाप्त हो गए। यहाँ 6वें और 7वें अध्याय के बीच में ये यहाँ शुद्ध हुई थी और उसे उसके वस्त्र दिए गए। अब ये दुल्हन नहीं है, परंतु ये कलीसिया है, निष्कलंक लोग जिन्हें ये सौभाग्य नहीं मिला। संभव है संदेश स्वीकारने का या किसी प्रकार से वे इन झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा अंधे किए गए और उन्हें अवसर नहीं मिला, और वे फिर भी हृदय से वास्तव में निष्कपट हैं और परमेश्वर उनके हृदय को जानता है, और वे यहाँ शुद्ध किए गए इस समय के चलते। आप इस पर ध्यान दें, दूसरा शुद्ध होने का समय ये इसराइल के लिए है। जब वो जमा होते हैं, ये दूसरी तय है। परमेश्वर ने इसराइल को पीड़ा के काल में शुद्ध किया। करोड़ों में से वहाँ एकत्र होंगे, वहाँ चुने हुए 144,000 होंगे और वे भी शुद्ध किए जाएंगे। परमेश्वर इसराइल को शुद्ध कर रहा है। ध्यान दें, यहाँ पूरी पृथ्वी शुद्ध होनी है। वहाँ ऐसी चीज होगी कि चांद, सितारे और सारी प्रकृति शुद्ध की जाएगी। आप देखिए ये क्या है, पृथ्वी अपने आप को नया कर रही है शुद्ध होने से। सहस्र शताब्दी के लिए तैयार हो रही है, सहस्र शताब्दी आ रही है, और देखिए हर चीज जिसमें कोई गंदगी है उसे छठवीं मोहर के समय में शुद्ध होना है। अब क्या आपने ध्यान दिया, इस सातवीं मोहर के खुलने पर ये भी तीन तह के भेद में है। ये वाला मैंने कर दिया, बोलूंगा और बोल दिया कि ये एक भेद है। सात गर्जनों का स्वर्ग में सात गर्जने इस भेद को खोल देंगे। ये ठीक मसीह के आगमन पर होगा, क्योंकि मसीह ने कहा कोई नहीं जानता कि वो कब लौटेगा। आपने ध्यान दिया जब यहूदियों ने ये उससे पूछा, जानते हैं जब हम यहाँ मत्ती 24 में वचन की तुलना करते हैं छह मोहरों के साथ, सातवीं वाली छोड़ दी गई, क्योंकि आप देखते हैं मसीह ने कहा केवल परमेश्वर स्वयं जानता है, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लिखी भी नहीं है। आप देखिए वे शांत हो गए, तब कुछ भी घटित नहीं हुआ। स्वर्गदूत इसे नहीं जानते, कोई नहीं जानता वो कब आ रहा है, परंतु वहाँ इन गर्जनों की सात आवाज़ें होंगी और ये उस महान प्रकाशन को उस समय प्रकट करेगी। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ हमें, जो यदि हम ये नहीं जानते और यदि हम ये समय तक नहीं जाना जाएगा, परंतु ये उस दिन में प्रकट किया जाएगा, उस घड़ी में जिसमें इसे प्रकट होना है। इसलिए हमारे करने के लिए ये चीज है कि परमेश्वर के सामने श्रद्धा के साथ रहें और उसकी सेवा करें और वो सब करें जो हम जानते हैं कि कैसे करें और अच्छा जीवन जिएं, मसीही जीवन। यहाँ अब हम पाते हैं कि छठवीं मोहर हमारे लिए खोल दी गई है। हम इसे देखते हैं और हम जानते हैं कि ये सातवीं मोहर लोगों के लिए नहीं तोड़ी जा सकती जब तक कि वो घड़ी ना आए। अब वहाँ कोई कारण था कि परमेश्वर ने इन सात आवाजों को गरजने दिया, क्योंकि इसे आना चाहिए। देखिए, क्योंकि हम पाते हैं कि मसीह ने मेमने ने पुस्तक को अपने हाथ में ले लिया और उसने वो सातवीं मोहर खोल दी। परंतु आप देखिए, ये छिपा हुआ भेद है, इसे कोई भी नहीं जानता, परंतु ये ठीक उसके साथ है जो उसने कहा। कोई भी उसके आगमन को नहीं जान पाएगा, वे भी इसे नहीं जान पाएंगे, इस सात गर्जन के भेद को। इसलिए आप देखिए, ये आपस में जुड़ी हैं। हमारे पास इसकी इतनी ही समझ है आज, क्योंकि इसका बाकी सब खुल गया है, परंतु ये नहीं खुली। परंतु अपने कमरे में बैठे हुए मैंने ये सुना, या सुना नहीं बल्कि इसे सात गर्जनों में खुलते हुए देखा। अब हम यहीं तक जहां हम जा सकते हैं, ठीक वहां। और अब मैं ये विश्वास करता हूं कि हम में से प्रत्येक आप परमेश्वर की सेवा करेंगे और जो ठीक है वही करते हैं, और अपने सारे जीवन भर उससे प्रेम करेंगे और उसकी सेवा करेंगे, और बाकी की चिंता परमेश्वर करेगा। अब हमारे इसकी पूर्णता में यहाँ अब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वे सारे भेद छह मोहरों के जो मोहर बंद थे, और हम समझते हैं और जानते हैं कि यहाँ वो सातवीं मोहर लोगों के जानने के लिए नहीं है। अब उसका आगमन, उसके आगमन की घड़ी में जब पृथ्वी का नाश, आप जानते हैं, उसने वहाँ कहा पृथ्वी के अंत के आने का क्या चिन्ह होगा, मती 24 में, वहाँ जहाँ उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा, वो उस पर गया। उसने इसराइल के एक राष्ट्र के समान एकत्र होने के विषय में बताया, 31वें पद में, मती 24:31 के। परंतु तब वो दृष्टांतों पर आरंभ हो गया। देखिए, तब आप देखिए, अंजीर के वृक्ष का दृष्टांत सीखो, जब तुम उसमें कोपले निकलती देखते हो, क्यों तुम जानते हो कि ग्रीष्म काल निकट है, और जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तब जान लो समय निकट है। देखिए, इसराइल अपने राष्ट्र में एकत्र हो रहा है, परंतु आप ध्यान दें, उसने इस सातवीं मोहर के प्रकाशन को छोड़ दिया। और यहाँ जब सातवीं मोहर, जब उसने इसे खोला, उसने इसे फिर छोड़ दिया। देखिए, इसलिए हम इसे देखते हैं कि ये एक पूरा भेद है। इसलिए इस भेद को जानने के लिए वो घड़ी अभी नहीं है, इसलिए हम यहाँ तक हैं, और बाकी सब उस समय के आसपास जाना जाएगा कि यीशु इस पृथ्वी पर फिर से प्रकट होता है अपनी दुल्हन के लिए, या उस समय जो भी घटित होगा। अब उस समय तक आइए हम सब प्रार्थना करें, अच्छा जीवन जिएं, सीधा मसीही जीवन, उसके आगमन की प्रतीक्षा करें। और अब यदि ऐसा हो कि ये टेप किन्हीं व्यक्तियों के हाथों में कहीं पड़े, तो किसी प्रकार का कोई वाद इसमें से बनाने का यत्न ना करें। आप केवल एक काम करें, आप निरंतर परमेश्वर की सेवा करते रहें, क्योंकि ये भेद इतना बड़ा है कि यहाँ तक परमेश्वर ने यूहन्ना को भी नहीं लिखने दिया ये गर्जा। परंतु वो जानते हुए हमसे प्रतिज्ञा की ये खुलेगा, परंतु इस समय ये खुला हुआ नहीं है। और अब हम परमेश्वर के आभारी हैं कि जो उसने हमें दिखाया है। मैं वहाँ कमरे में 8 दिन बैठा रहा, और संदेश जो मुझे हाल में मिला आपको व्याख्या देता रहा। यहाँ आप में से बहुत से समझेंगे, और मैंने प्रतिज्ञा की है कि वहाँ कुछ आत्मिक चल रहा है सारे समय, जिसके लिए मैं निश्चित हूँ कि आपको नहीं मालूम। और यहाँ जो ये है, ये वचन के इस अनुवाद का पूर्ण रीति से प्रमाण है कि परमेश्वर की ओर से भेजा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले कि हम इसमें जाते भी, मुझे पश्चिम जाने के लिए छोड़ना पड़ा। एक दिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया लगभग 10 बजे एक सुबह, और मैंने आकर इसको यहाँ बता दिया जो मैंने देखा था। नहीं मालूम था कि ये क्या था, ये सात स्वर्गदूतों का झुंड था। हम इसे याद रखेंगे, आपके पास ये टेपर है जिसे ये कौन सा समय है श्रीमान कहा गया। अच्छा, अब ठीक यही है जो आप देख रहे हैं। अब सात स्वर्गदूत, मैं पश्चिम में था, आपको याद है, छोटे वाले संदेशवाहक वे पूर्व में चले गए, दूसरे संदेशवाहक पंडुकियाँ, थोड़ी सी बड़ी चिड़ियाँ, वे पूर्व में चली गईं, और तब मैंने देखा वे मेरे साथ थे सारे समय, वो पहला और दूसरा खिंचाव थे। अब तीसरा पश्चिम से आया, बहुत भयानक गति से सामने आ गया और उन्होंने मुझे ऊपर उठा लिया। ये वापस पूर्व में आ रहा था उन सात मोहरों के भेद के साथ, जैसा कि यह जूनियर जैक्सन के स्वप्न में कहा गया था कि प्रभु ने मुझे उसके लिए अर्थ बताने दिया। उस पैरामिड के भीतर की ओर वहाँ एक सफेद पत्थर था, वहाँ कुछ नहीं लिखा था। यही कारण था कि मुझे पश्चिम में जाना था कि इसे स्वर्गदूतों के संदेश के साथ जोड़ूं कि यहाँ वापस आकर इसे कलीसिया पर प्रकट करूं। स्मरण रहे, मैंने कहा था अगली बातें जो हुई यहाँ इस आराधनालय में होंगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी चीज मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें क्या हुआ, और यदि आप इस टेप को सुन रहे हैं, ये कौन सा समय है श्रीमान? आप ध्यान देंगे कि एक स्वर्गदूत मेरे लिए बहुत ही ध्यान देने योग्य था और बाकी वे साधारण से प्रतीत होते थे, परंतु ये स्वर्गदूत एक विशेष स्वर्गदूत था। वो मेरे उल्टे हाथ पर था उस झुंड में जो पैरामिड के रूप में था, और स्मरण रहे ये पैरामिड में था जहां वो भेद वाले सफेद पत्थर पर लिखा हुआ नहीं था, और स्वर्गदूतों ने स्वयं ही मुझे इस पैरामिड में उठा लिया। परमेश्वर के भेद केवल उन्हें मालूम थे, और अब वे संदेश वाहक थे उस पैरामिड का अनुवाद करने आए, या वो संदेश इन मोहरों का वो गुप्त भेद जो कि पैरामिड के अंदर रखा था। अब स्वर्गदूत मेरे उल्टे हाथ पर था, वही वास्तव में अंतिम होगा या सातवां स्वर्गदूत, यदि हम उल्टे से सीधे को गिने, क्योंकि वो मेरे उल्टे हाथ पर था, मुझे देख रहा था पश्चिम की ओर, वो पूर्व की ओर आ रहा था, उल्टे हाथ की ओर होगा, इसलिए वो अंतिम दूत का संदेश होगा, बहुत ध्यान देने योग्य। स्मरण रहे मैंने कैसे कहा इसके थे, उसका सर पीछे को और उसके बड़े नुकीले पंख, और कैसे वो मेरी ओर सीधे उड़कर आया। अब ये वो सातवीं मोहर, ये अब भी ध्यान देने वाली चीज थी, और हम नहीं जानते ये क्या है अब भी, क्योंकि इसे तोड़ने की आज्ञा नहीं है। परंतु अब आप में से प्रत्येक ने जो सभा में है ध्यान दिया है कि ये कैसी सभा रही है। हर कोई ठीक प्रतीत हुआ, अपनी कुर्सी के किनारे बैठा, और हर कोई जो चारों ओर खड़े हैं दोपहर 1-2 बजे से दरवाजों के खुलने की प्रतीक्षा में, और कि यहाँ सामने की ओर आ जाएं, दीवारों के चारों ओर खड़े हैं अकड़ते हुए हाथ पैरों के साथ और सब कुछ। ये क्या है? ये पवित्र आत्मा है जो इन संदेश वाहकों को नीचे भेज रहा है, और वे हम पर इसे प्रकट कर रहे हैं। और फिर ध्यान दें कि कैसे ये वचन में ठीक बैठता है, बिल्कुल ठीक। और फिर आप सबको बता दूं कि ये सत्य है, उसने ये लगभग 2 महीनों पहले बता दिया था या अधिक, इसके पहले कि ये कभी घटित हो। ये जब मैं पश्चिम में गया ये न जानते हुए यहाँ अनुवाद के साथ वापस आया हूँ, जैसे कि उसने मुझे ये दिया। अब याद रखें, इस दर्शन में उसने मुझे दर्शन में एक बात कभी नहीं बताई। जब उसने मुझे ऊपर उठाया मैं डर गया कि मैं मरने जा रहा था, धमाके में मारा गया। आप देखिए, वे ये नहीं कर सकते थे। अनुवाद वैसे ही आया जैसे मुझे इसकी आवश्यकता थी, ये कमरे में था, मैंने इसे वैसे ही दिया जैसा ये मुझे दिया गया। अब मित्रों आप देखिए, दर्शन असफल नहीं होते, वे सदा सिद्ध होते हैं, बिल्कुल सच होते हैं। अब दर्शन जमा वचन जमा इतिहास जमा कलीसिया के युग और सब एक साथ मेल खाते हैं, इसलिए मैं सच में कह सकता हूँ वो जो मेरी सबसे अच्छी समझ से है और परमेश्वर के वचन के अनुसार और दर्शन और प्रकाशन, इसलिए अनुवाद यहोवा यूं कहता है। अब परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रत्येक को वास्तव में बहुतायत से, जैसे कि हम यहाँ खड़े हुए हैं कलीसिया के अच्छे पुराने गीत को गाते हैं। परमेश्वर आपको प्रत्येक को आशीष दे, आमीन। मैं परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं उससे प्रेम करता हूँ अपने पूरे हृदय से। क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया, भाई नेविल परमेश्वर आपको आशीष दे।